एकल छात्रावास में जियाजी ने बिस्तर पर लेटे दो लोगों को ठंडी निगाहों से देखा। जब बाहरी लोग इस दृश्य को देखेंगे तो वे सोचेंगे कि जियाजी सदमे को सहन नहीं कर सका और प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आखिरकार बिस्तर पर जो व्यक्ति था वह उसका मंगेतर और उसके दत्तक माता पिता की जैविक बेटी थी और गुहान विश्वासघात और बेवफाई का दृश्य पेश कर रहा था। गुहान ने रोते हुए जियाजी को समझाया, हम नशे में थे बहन, कृपया मुझे माफ कर दो और किसी को मत बताना। जब वे दोनों छोटी थीं तो उन्हें और गुहान को गलती से ले जाया गया था और गुहान ने उन्हें केवल 2 साल पहले ही पहचाना था। गुहान के वापस आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बड़ी आंखों से जो रोने वाली थी सबको डरते हुए देखता रहता। हर कोई यही महसूस करेगा कि वह दयनीय और असहाय है। हर कोई यही सोचेगा कि जियाजी ने गुहान को धमकाया। ठीक वैसे ही जैसे अब उसके बगल में खड़े उसके मंगेतर डिंग जियानन पर एक नज़र डालने से ही वह बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता था, मानो वह अपने पीछे उसकी रक्षा करना चाहता हो। ऐसा लग रहा था जैसे धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया व्यक्ति गुहान नहीं बल्कि जियाजी था। यदि बाहर गलियारे में लोगों के खाना पकाने, तलने और इधर उधर घूमने की आवाजें न आती, यदि ये तथ्य न होता कि वे अब अस्त व्यस्त हो गए हैं, संभवतः दोनों ही तुरंत कहेंगे कि वे ठीक हैं। जियाजी, ये पहले ही हो चुका है। गुहान को दोष मत दो, अगर तुम चाहो तो मुझे दोष दो। ये मेरी कमजोर इच्छा शक्ति है। अगर तुम मुझे मारना या डांटना चाहते हो तो सीधे मुझ पर आओ। जियाजी ने शांति से अपने मंगेतर को देखा, हालांकि उसे नहीं लगा कि उनके बीच बात करने के लिए कुछ भी था। कहने की जरूरत नहीं कि यह शादी निश्चित रूप से नहीं होने वाली है। वह यहां इसलिए रुकी क्योंकि उसने गु परिवार की स्थिति को बदलने की क्षमता के बारे में सोचा था, इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और खुद से घृणा करना जारी रख सकती थी। जियाजी ने अपनी मुठियां भींच ली और अपने दांतों को भींच लिया ताकि उसके मुंह के कोने मुड़ न जाएं, और वह अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। आज जो कुछ हुआ उसके लिए एक आभार पत्र लिखिए और उस पर आप दोनों के हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान लिखिए। चलो हम अलग हो जाएं और हमेशा खुशी से रहें। गुहान और डिंग जियानन ने सोचा था कि जियाजी रोएगी, हंगामा करेगी, लड़ेगी और डांटेगी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाजी उन्हें ये लिखने के लिए कहेगी। ग्रीष्म संक्रांति पहले से ही ऐसी है तो हमें ये लिखने के लिए कहने का क्या मतलब है? दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा की खातिर चीजें इतनी बदसूरत क्यों हो गईं? अंकल गो और आंटी गो भी इससे सहमत नहीं होंगे। डिंग जियानन जानता था कि जियाजी की कमजोरी का फायदा कैसे उठाया जाए। तुम्हें पता है कि यह बदसूरत भी है। मैंने अपने माता पिता को पहले ही काफी शर्मिंदा कर दिया है क्योंकि मैंने दरवाजा नहीं खोला और सभी को तुम दोनों कुत्तों की बदसूरत शक्ल नहीं दिखाई। इसे मत लिखो, है ना? ग्रीष्म संक्रांति तेजी से आगे बढ़ती है। गुहान और डिंग जियानन को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना वह दरवाजे तक तैरता हुआ गया और दरवाजे का ताला पकड़ लिया। गुहान चौंक गया। ऐसा नहीं है कि वह कपड़े नहीं पहनना चाहती, बल्कि बात यह है कि कपड़े जियाजी के हाथों में हैं। यह एक सामूहिक इमारत है। दरवाजा खुलते ही बाहर सब लोग देख पाएंगे कि वह और डिंग जियानन अब कैसी दिखती हैं। तब तक ये पूरे कारखाने के लिए एक घोटाला बन जाएगा। नहीं बहन, चलो लिखते हैं। जब गुहान सहमत हो गया तो डिंग जियानन की पहले से ही उदास अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं इस बार बस उलझन में था और मैं निश्चित रूप से फिर से वही गलती नहीं करूंगा। हमारी शादी 1 महीने में होने वाली है, मुझे एक और मौका दो। मैं जीवन भर आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या तुम हमेशा मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? ये स्पष्ट था कि डिंग जियानन जियाजी को वापस जीतने की कोशिश कर रहा था और उसने ये प्रमाण पत्र लिखने से बचने के लिए जियाजी से विनती करने के लिए अपना आसन नीचे कर लिया। डिंग जियानन एक चतुर व्यक्ति है और वह तुरंत ही फायदे और नुकसान का आकलन कर लेता है। गंभीरता से कहूं तो अगर जियाजी का पुनर्जन्म न होता, मैं सचमुच अपने सामने खड़े आदमी को देखकर उलझन में हूं। यदि यह उसका पुनर्जन्म न होता तो उसके सामने डिंग जियानन वास्तव में हर पहलू में एक बहुत ही संतोषजनक पति उम्मीदवार होता। उसके चेहरे की बनावट सामान्य है, उसकी नौकरी अच्छी है तथा वह दूसरों के प्रति सौम्य और उदार है। इस घटना से पहले वह अपनी मंगेतर के प्रति और भी अधिक विचारशील था। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए वह फैक्ट्री की सभी महिला कर्मचारियों की नज़र में सबसे भरोसेमंद आदमी है। यदि यह पिछले जीवन में जियाजी था तो वह वास्तव में डिंग जियानन के पश्चातापपूर्ण रूप से भ्रमित हो जाएगा। अपने पिछले जीवन में जियाजी ने इस आदमी को मृत्यु तक प्यार किया था। वह 10 वर्षों से इस आदमी का अनुसरण कर रही है। जब वह छोटी थी तब वह उसकी छोटी पूंछ थी और जब वह बड़ी हुई तो उसकी प्रशंसा से भर गई। इस व्यक्ति का विनम्रतापूर्वक अनुसरण करें और उसे कभी न छोड़ें। 20 साल बाद जाकर उसने उसके साथ तलाक का समझौता किया जिससे उसके सभी प्रयास पूरी तरह से नकार दिए गए। डिंग जियानन के शब्दों में उसने जो कुछ भी किया वह जियाजी के लिए आत्मस्पर्शी था। उसने शुरू से अंत तक जियाजी से कभी प्यार नहीं किया। जिया जी ने कभी नहीं सोचा था कि तलाक का प्रमाण पत्र मिलने के तुरंत बाद ही वह एक घातक बीमारी से मर जाएगा। सौभाग्य से जिया जी का पुनर्जन्म हुआ और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह शादी से पहले के समय में वापस आ गया था। इस आदमी ने ऐसा क्यों सोचा कि वह उससे माफी मांग सकता है? पुनर्जन्म की पहली तलवार विश्वासघाती व्यक्ति को मारना है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। उसने छत्ते के कोयले के नीचे की चाबी का इस्तेमाल करके एकल शयनगृह को खोला और जोड़े को सिर्फ इस क्षण के लिए यहां फंसा दिया। इतनी बकवास बंद करो और जल्दी लिखो। मुझे कूड़ा उठाने की आदत नहीं है। उसने अपनी उंगलियों से दरवाजे का ताला घुमाया और उसके सामने खड़े पुरुष और महिला के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मंद रोशनी में डिंग जियानन का चेहरा बहुत उदास लग रहा था। उसने जिया जी की ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि यह महिला, जिसने उसके प्यार के लिए खुद को खुशामद किया और विनम्र बनाया, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ये लिखूं? अगर कोई ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा गया तो वह इसका इस्तेमाल मुझ पर हमला करने के लिए करेगा। जिया जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? डिंग जियानन की आवाज बहुत धीमी थी और उनकी बोलने की गति एक समय में एक शब्द बोलने जैसी थी। वह स्पष्टतः अपने क्रोध को दबा रहा था। इससे मेरा क्या लेना देना, आप लिखेंगे या नहीं? जिया जेड के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वह अपनी भावनाओं को इतना स्थिर रख सकता है। डिंग जियानन को स्पष्ट रूप से पता था कि अब यह अपरिवर्तनीय था, इसलिए उन्होंने और गुहान ने बिना कुछ कहे प्रमाण पत्र लिख दिया। सभी के हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान शामिल थे। जिया जी ने नए जारी किए गए प्रमाण पत्र की कई बार जाँच की। प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप था। प्रमाण पत्र पर गीली स्याही से फूंक मारने के बाद जिया जी ने उसे मोड़ा और सीधे अपनी जेब में रख लिया। मेरे पास अभी भी 35 युआन और 50 किलोग्राम राष्ट्रीय खाद्य कूपन हैं। जिया जी द्वारा बढ़ाए गए कठोर हाथ को देखकर डिंग जियानन ने लगभग अपने दांत काट लिए। तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? क्या आपको मुझे हरी टोपी देने का अफसोस है? जिया जेड के धीमे और जानबूझकर कहे गए शब्दों ने डिंग जियानन का चेहरा पूरी तरह से काला कर दिया। जिया जी को देखते ही गोहान थोड़ा कांप उठा। इस समय वह भूल गई कि वह अपना दिखावटी रवैया बरकरार रखे हुए है। बहन, मेरा अपने जीजा को ले जाने का कोई इरादा नहीं था। ये वास्तव में एक गलत फहमी थी। अपना बदबूदार मुंह बंद करो। मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं। और मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी जैसी बेशर्म बहन नहीं दी। जिया जी ने गोहान की ओर देखा तक नहीं। अपने पिछले जीवन में गोहान के बहुत सारे अभिनय देखने के बाद अब वह यथार्थवादी बनना चाहती है। डिंग जियानन ने घर की दराजों में तलाशी ली और 35 युआन और 50 किलोग्राम राष्ट्रीय खाद्य कूपन पाए। जिया जी ने पैसे और भोजन के कूपन लिए और दोनों लोगों को ठंडी नजर से देखा। दरवाजा खोला और बाहर चला गया। डिंग जियानन ने राहत की सांस ली और जल्दी से गोहान को जमीन से ऊपर उठाया। उसने उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, मैं जिम्मेदारी लूंगा। इससे पहले कि गोहान स्नेहपूर्ण भाव से जवाब दे पाता, उसने दरवाजे के बाहर गलियारे से आती एक तेज चीख सुनी। आग! अनगिनत लोग बाहर आ गए। फिलहाल आग बुझाने के कोई उपाय मौजूद नहीं है और गलियारा कई तरह की ज्वलनशील सामग्रियों से भरा पड़ा है। आग लगने से लोगों की जान जा सकती है। दरवाजे के पास से भागती हुई दागान की पत्नी ने उन दोनों को अस्त व्यस्त कपड़ों में एक दूसरे से लिपटते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आंटी लियू को भी पकड़ लिया जो भागने वाली थी। वे दोनों ही आंगन में सबसे बड़े मुंह वाले हैं। जिया जी ने छात्रावास भवन से बाहर निकलते हुए अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया। युगुजियांग ने आगे बढ़कर जिया जी को जोर से थप्पड़ मारा। जिया जी ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। उसके चेहरे पर जलन सी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि उसने थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोका था। कल सुबह तक इंतजार किए बिना ही चेहरा इतना सूज गया था कि देखने में भद्दा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा पर मन ही मन उसे ठेस पहुंची। यह उसकी दत्तक माँ थी। युगुजियांग ने अत्यंत नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुमने अपनी बहन को क्यों नष्ट कर दिया? आपको ऐसा लगता है कि उसने आपसे सब कुछ छीन लिया है और आप उससे नफरत करते हैं, है ना? लेकिन क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते? अगर मैं और तुम्हारे पिता ना होते तो तुम्हें अपने जैविक माता पिता के परिवार के साथ श्रम सुधार के लिए देहात भेज दिया जाता। क्या तुम्हें दोषी महसूस नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें हमारा आभारी नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पिता और मुझे तुम्हारे जैसे कृतघ्न व्यक्ति का पालन पोषण क्यों करना पड़ा? अपनी बहन को बर्बाद करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जैसे ही वह बोल रही थी, युगुजियांग अचानक रोने लगी और उदास आंखों से जिया जी का हाथ पकड़ लिया। माँ, कृपया कृपया बस इतना कह दीजिए कि कल आप ही डिंग जियानन के साथ थी, क्योंकि आप दोनों वैसे भी शादी कर रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग इसे देखते हैं या नहीं। जिया जी का दिल पूरी तरह से मर चुका था और वह पूरी तरह सुन्न महसूस कर रहा था। उसके पिछले जीवन में ये घटना इसलिए नहीं घटी क्योंकि उसने समझौता कर लिया था और संघर्ष नहीं किया था। लेकिन मुझे इस जीवन में फिर से दिल टूटना सहना होगा। माँ, क्या आपको लगता है कि हर कोई अंधा है? अगर मैं कहता हूँ कि यह मैं हूँ, तो यह मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मुझे गला घोंट कर मार डालो। जिया जी ने अपनी गर्दन डिंग गुइजियांग की ओर सीधी की। यही यही चुटकी काटो, चुटकी काटो। अगर मैं मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? ये सुनने के बाद यू गुइजियांग ने अविश्वास से जिया जी की गुस्से भरी आंखों को देखा, ऐसी आंखें जो किसी को खा जाना चाहती थी। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने अपनी बहन को चोट पहुंचाई है और मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे नहीं बताएंगे, है ना? ठीक है, तो आप प्रतीक्षा करें। जिया जी ने अपना चेहरा ढक लिया और छोटे रसोई घर में चला गया। इस ट्यूब के आकार की इमारत में उन्हें जो कमरा दिया गया था वह बहुत भीड़भाड़ वाला था। दोनों भाई एक कमरे में रहते थे, उनके माता पिता दूसरे कमरे में रहते थे और गुहान, जिसे 2 साल पहले गोद लिया गया था, लिविंग रूम में एक सिंगल बेड पर रहता था। जिया जेड के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे खाना बनाने के लिए बालकनी में जाना पड़ता था और एक ही बिस्तर पर सिमट कर रहना पड़ता था। एक दरवाजे के पर्दे से विभाजन बनाया गया था। मेरा पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि मुझे क्या करना है। वर्तमान में जिया जी एक बेरोजगार युवती है। आजकल नौकरी पाना मुश्किल है। या तो आपको अपने माता पिता की जगह लेनी पड़ती है, या फिर आपके पास अच्छे संबंध हों और आपको नौकरी का कोटा मिल जाए। क्या आप अपने माता पिता की नौकरी संभाल रहे हैं? ऐसी अच्छी बात के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। बहुत पहले ही यह सहमति बन गई थी कि दोनों बेटे अपने दत्तक माता पिता का काम संभालेंगे। चाहे गुहान कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, ये परिवार अभी भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक तरजीह देता है। जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो मुझे अपने बेटे को प्राथमिकता देनी पड़ती है, उसे इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे डर है कि अगर मैं यहीं रहा तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन कहाँ जाएं? जिया जी ने अपने पिछले जीवन में सीमा निर्माण में किए गए 20 वर्षों के कठिन परिश्रम को याद किया। वह कठिनाइयों से नहीं डरती और यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन इस घर को छोड़ना आसान नहीं है। घर की रजिस्ट्री और परिचय पत्र के बिना वह एक कदम भी नहीं चल सकती। गुहान पिछले 2 दिनों से जिया जी को भयावह नजरों से देख रहा है और चाहता है कि वह जिया जी को खा जाए। इस घटना के बाद गुहान के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसके पास आज्ञाकारी रूप से डिंग जियानन से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एक माँ के रूप में डिंग जियानन के सुरक्षात्मक रवैये के साथ उसके लिए यह अजीब होगा कि वह इस बहू को, जिसने घर में प्रवेश करने से पहले ही उसके बेटे को शर्मिंदा कर दिया था, एक आसान जीवन जीने दे। मुझे नहीं पता कि ग्रीष्म संक्रांति तक इन 2 लोगों के साथ क्या करना है। वह आपराधिक कानून की सीमाओं का परीक्षण करने का काम नहीं कर सकती। इस जीवन में मैं केवल यही कर सकता हूं कि समय रहते नुकसान को रोकूं और इस बदमाश और कुतिया को जेल में बंद कर दूं। विशेष रूप से डिंग जियानन की मां ने वास्तव में ये कहते हुए अफवाहें फैलाई कि उस दिन जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। परिणामस्वरूप जिया जी ने डिंग जियानन की ओर कागज हिलाया और डिंग जियानन केवल बाहरी लोगों के सामने कह सकता था कि उस दिन जो हुआ वह गलतफहमी नहीं थी। जिया जी जानती थी कि ये लोग अपनी बात से मुकर जाएंगे, अन्यथा वह उनसे ऐसा प्रमाण पत्र लिखने के लिए नहीं कहती। आखिरकार हमारे पास समृद्ध युद्ध अनुभव है। यदि गुहान अभी भी उससे मौत तक लड़ना चाहता है तो जिया जी डरती नहीं है। हालांकि जिया जी को जिस बदले की उम्मीद थी वह जल्द ही आ गया। 2 दिन बाद दत्तक माता यू गुइजियांग के चेहरे पर अचानक एक दयालु मुस्कान आ गई। उसने अपने बैग से एक सफेद फूलों वाली पोशाक भी निकाली। जिया जी, देखो, माँ ने तुम्हारे लिए एक स्कर्ट खरीदी थी। उस दिन माँ की गलती थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी बहन थी जिसने गलत काम किया। जल्दी करो और अपनी स्कर्ट पहन लो ताकि माँ इसे देख सकें। जिया जी की आंखें चमक उठी। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के आप पर दया दिखाता है तो वह या तो देशद्रोही है या चोर। बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। उसकी बहन ने सारे कपड़े फेंक दिए थे। उन्हें बार बार बदला गया था, बार बार फाड़ा गया था और फिर सिलकर जोड़ा गया था। अब उसके पास सचमुच एक नई पोशाक थी। घरेलू पंजीकरण पुस्तिका मिलने से पहले वह परिवार में केवल आज्ञाकारी और अदृश्य व्यक्ति ही हो सकती थी। उसकी आंखों की हल्की लालिमा, एक हल्की सी लालिमा देखकर आंसू आ जाते थे। माँ, कोई जरूरत नहीं, इतनी सुंदर स्कर्ट मेरी बहन को देनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए तो इसे पहन लीजिए। आपकी बहन के पास बहुत सारी स्कर्ट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह माँ ने खास तुम्हारे लिए खरीदा है, जल्दी से इसे पहन लो। जिया जी अपनी स्कर्ट हाथ में लिए छोटे से क्यूबिकल में छिप गई, कृतज्ञता से भरी हुई। क्यूबिकल में दाखिल होते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने बाहर बैठक कक्ष की ओर ठंडी निगाह से देखा। वह जानती थी कि उसके दत्तक माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 18 साल तक उसका पालन पोषण करने के बाद भी उनके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं होगी। उसे मूर्ख मत समझो, उसने कल रात अपने माता पिता और गोहान के कमरे में फुसफुसाहट सुनी थी। पता चला कि गोहान को ये खबर डिंग जियानंद से मिली थी और उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि उसे घर पर मुफ्त भोजन खाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गु परिवार के सबसे बड़े बेटे को मशीनरी फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में नौकरी दिलाने के लिए दोनों पुरुषों ने मशीनरी फैक्ट्री के निदेशक के मूर्ख बेटे से उसकी शादी कराने पर चर्चा की। उसने सचमुच उससे सारा मूल्य निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले जन्म में जियाजी ने उसके क्रोध और घृणा को सहन करके डिंग जियानंद से शादी की थी और ऐसा नहीं होता। इस बार उसने विश्वासघाती आदमी को मार डाला, लेकिन अंत में उसे एक मूर्ख पुत्र प्राप्त हुआ। जियाजी ने एक पोशाक पहन ली और चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव लिए बाहर चली गई। माँ, क्या यह अच्छा लग रहा है? उसने दोनों हाथों से अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ा और घूम गई। डिंग गुइजियांग ने एक नजर डाली और संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, इस कुतिया में लोमड़ी बनने की क्षमता थी। वह बहुत सुंदर है, मेरी बेटी छोटी बच्ची होने के बाद से बहुत बदल गई है। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है, वह और भी सुंदर होती जा रही है। माँ, पहले मुझे अपनी स्कर्ट बदलने दो, मुझे इतनी सुंदर स्कर्ट रखनी है। अगर यह खराब हो गया तो ये शर्म की बात होगी। बदलने की कोई जरूरत नहीं, बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप इससे क्या करने वाले हैं? आओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी और चोटी बना दूं। जब से तुम बड़े हुए हो, बहुत समय हो गया है, मैंने तुम्हारे बालों में कंघी नहीं की है। माँ और बेटी प्रेमपूर्ण माँ और पुत्रवत भक्ति का नाटक प्रस्तुत करती हैं। युगुइजियांग ने जिया जेड के बालों को दो छोटी चोटियों में बांध दिया। कहना न होगा कि जिया जी वाकई गोरी और खूबसूरत थी। वह इतनी सुंदर पोशाक में है कि लोग उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। युगुइजियांग ने जल्दी से दरवाजा खोला और मशीनरी फैक्ट्री से लियु मिंगदे और उनकी पत्नी अपने बेवकूफ बेटे के साथ अंदर चले आए। युगुइजियांग टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक साधारण महिला कर्मचारी का फैक्ट्री निदेशक जैसे व्यक्ति से कोई संपर्क कैसे हो सकता है? जैसे ही उसने लियु मिंगदे और उसकी पत्नी को देखा, युगुइजियांग ने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान ला दी। निदेशक लियु, कृपया अंदर आइए। उसने उस व्यक्ति को लिविंग रूम में बुलाया और जल्दी से जियाजी को खींच लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। निर्देशक लियु, यह मेरी सबसे बड़ी बेटी जियाजी है। क्या वह सुंदर नहीं है? बिना कुछ कहे उसने जियाजी को जोर से चुटकी काटी। जल्दी करो और डायरेक्टर लियु को नमस्ते कहो। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जियाजी ने मुस्कुराते हुए निदेशक लियु का अभिवादन किया। नमस्ते निदेशक लियु, नमस्ते चाची लियु। लियु मिंगदे के प्रेमी ने जियाजी को ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाँ, वह सुंदर है। क्या तुम स्कूल में हो? तुम्हारा स्तर क्या है? यद्यपि मेरा बेटा मूर्ख है, मैं उसके लिए मूर्ख पत्नी नहीं ढूंढ सकता। बच्चे के भविष्य के जीन को ध्यान में रखते हुए निर्देशक लियु की पत्नी को कई समस्याएं हैं। मैं गया, मैंने जूनियर हाई स्कूल से स्नातक किया। जैसी कि उम्मीद थी, लियु मिंगदे और उनकी पत्नी ने आने वाले ग्रीष्म संक्रांति की बहुत प्रशंसा की। लियु मिंगदे के प्रेमी ने भी जियाजी को एक तरफ ले जाकर कुछ देर बातचीत की। बेशक वे सभी अप्रत्यक्ष प्रश्न थे और उन्होंने स्वयं जिया जेड के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। जियाजी ने एक एक करके उनका उत्तर दिया। विशेष रूप से लियु परिवार के मूर्ख बेटे ने जियाजी को खींच लिया और जिया जेड के साथ खेलने पर जोर दिया। जियाजी को अपने मूर्ख बेटे के साथ बहुत धैर्य से खेलते हुए देखकर दंपति को राहत महसूस हुई। युगुइजियांग ने समय देखा। लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उसे फैक्ट्री डायरेक्टर और उसकी पत्नी को रात के खाने के लिए घर पर ही रोकना पड़ा। मुख्य उद्देश्य लियु देवांग और उनकी पत्नी को अपने बड़े बेटे और अपने पति से फिर से मिलने देना है। बेहतर होगा कि यह मामला आज ही तय हो जाए। बता दें कि जियाजी और निर्देशक लियु के बेटे को अगले दो दिनों में अपना विवाह प्रमाण पत्र मिल जाएगा और यह मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा। युगुइजियांग ने जियाजी को रसोई में छिपने के लिए खींच लिया। दोपहर होने को है, चलो सहकारी समिति से कुछ सब्जियां खरीदते हैं। और हाँ, 1 पाउंड सुअर का मांस भी और 2 पाउंड अंडे और 1 टुकड़ा टोफू भी। युगुइजियांग ने आज अपना मन कड़ा करके कड़ी मेहनत की। आम दिनों में उसका परिवार 1 महीने में 1 पाउंड भी मांस नहीं खा पाता था। समझ गया। माँ, मुझे घर गृहस्थी पंजीकरण पुस्तिका दे दो। जियाजी का चेहरा बहुत शांत था, लेकिन केवल वह ही जानती थी कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी बाहों में एक खरगोश पकड़ रखा हो। बिना एक शब्द कहे युगुइजियांग उस कमरे में गया जहां दंपति रहते थे और अलमारी से घरेलू पंजीकरण पुस्तिका, मांस खरीदने के लिए पैसे और मांस के टिकट निकाले। आजकल आप जो कुछ भी खरीदते हैं वह आपूर्ति पर आधारित होता है, इसलिए आपको घरेलू पंजीकरण पुस्तिका की आवश्यकता होती है। घरेलू पंजीकरण पुस्तिका के बिना आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, भले ही आपका परिवार कतार में हो। उसने वह चीज जिया जैद के हाथ में थमा दी और फुसफुसाया, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, एर्गोटो की एक और बोतल खरीदना याद रखना। जिया जी ने खरीदारी की टोकरी ली और फुसफुसाया, माँ मैं किराने का सामान खरीदने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मैंने अंततः राहत की सांस ली। उसने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से छात्रावास की इमारत से नीचे की ओर भागा। वह अपने परिवार की पंजीकरण पुस्तिका लेकर पड़ोस की समिति की ओर दौड़ी। इस समय दोपहर को काम से छुट्टी होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। पड़ोस समिति के निदेशक वहां अखबार पढ़ रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपना चश्मा उतारा और देखा कि वो जियाजी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ जिया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी माँ को कुछ हुआ है? जिया जी ने घरेलू पंजीकरण पुस्तिका निकाली और शांति से उसे मेज पर रख दिया। निदेशक लियू, मैं सीमा निर्माण में सहयोग के लिए हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। ये सुनकर निदेशक लियू दंग रह गए। पड़ोस की समिति ने सीमा निर्माण का समर्थन करने की बात पहले ही प्रचारित कर दी थी, लेकिन किसी भी परिवार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। हर कोई जानता है कि इन दिनों यदि आप सीमा निर्माण में सहयोग करने जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपना शेष जीवन वहीं बिताना पड़े। यदि कोई संबंध है तो कोई भी अपने परिवार के सदस्यों को जाने नहीं देगा। उन्होंने ये काम अनगिनत बार किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब पर्याप्त लोग नहीं हैं। आज रात टीमों के पहले बैच में पर्याप्त लोग नहीं थे। मैं जियाजी को संदेह भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। जियाजी, क्या तुमने इस बारे में अपने माता पिता से बात की है? सीमा निर्माण में सहयोग करना एक कठिन काम है। तार्किक रूप से कहें तो आपके परिवार को कोटा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आंटी लियू, इतने सालों से हमारी पड़ोसी होने के नाते आपको मेरे परिवार की स्थिति पता होनी चाहिए। जब निदेशक लियू ने यह सुना तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि गु और जिया परिवारों द्वारा गलत बच्चों को ले जाने की घटना ने 2 साल पहले बहुत विवाद पैदा किया था। जिया जी गु की जैविक बेटी नहीं है और सभी पड़ोसियों को अब ये पता है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मेरे माता पिता के लिए 6 लोगों का पेट भरना बहुत कठिन है। मैं बस सीमा निर्माण में सहयोग देना चाहता था और मातृभूमि के लिए योगदान देना चाहता था। दूसरी ओर इससे मेरी भोजन की समस्या भी हल हो जाएगी, जिससे कम से कम मेरे माता पिता को मेरा व्यर्थ में समर्थन नहीं करना पड़ेगा। ये परिवार का सम्मान भी है। मेरा अंतिम नाम जिया है, गु नहीं, इसलिए मेरे लिए हर समय गु परिवार में रहना अनुचित है। ये सुनकर डायरेक्टर लियू ने आह भरी। ये लड़की वाकई दयनीय है। वे उसे गलती से यह सोचकर ले गए थे कि उसके माता पिता उच्च पदस्थ अधिकारी परिवार से हैं और जब वह वापस आएगी तो एक अच्छे जीवन का आनंद ले सकेगी। लेकिन कौन जानता था कि जब वे वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि जिया परिवार को उनकी पृष्ठभूमि के कारण पदावनत कर दिया गया था। इस बच्चे को या तो उसके जैविक माता पिता के साथ भेज दिया जाएगा या वह गु परिवार में ही रहेगा। जैविक माता पिता अपने बच्चे को अपने साथ कष्ट सहने देने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को अपने पास रख लिया। लेकिन अगर आप गु परिवार में रहेंगे और मुफ्त में खाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरे लोग आपको नापसंद करेंगे। इन दिनों किसी के पास पर्याप्त भोजन नहीं है तथा भोजन की आपूर्ति मासिक मानक पर तय है। 1 औंस भी अतिरिक्त भोजन नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस लड़की को घर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर कोई जो आता जाता है जानता है कि जिया परिवार की यह लड़की गु परिवार की आया जितनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, जब तक आप सोच विचार कर काम करेंगे और कठिनाइयों से नहीं डरेंगे, सोना जहां भी होगा चमकेगा। आज रात लोगों का पहला समूह रवाना हो रहा है और तुम संयोग से वहां पहुंच गए हो, इसलिए वापस जाओ और अपना सामान पैक कर लो। ट्रेन आज रात 12 बजे है। निदेशक लियू ने परिचय पत्र तैयार किया और उनके घरेलू पंजीकरण को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की। प्रवासन दस्तावेजों को स्टाम्प लेने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएं और मूलतः सभी घरेलू पंजीकरण और परिचय पत्र की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। जिया जी ने परिचय पत्र खोला और उसे सावधानीपूर्वक अपनी जेब में रख लिया। डायरेक्टर लियू, कृपया आज मेरे माता पिता को मेरे पंजीकरण के बारे में न बताएं। आखिरकार मेरे माता पिता ने मुझे इतने सालों तक पाला है। वे निश्चित रूप से नहीं चाहते कि मुझे वहां कष्ट सहना पड़े। मैं समझता हूं कि मेरे माता पिता मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं कृतघ्न नहीं हो सकता और घर की वास्तविक कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे जाने के बाद आप उन्हें बता सकते हैं। ये देखकर कि बच्चा इतना अच्छा व्यवहार वाला और समझदार है, निदेशक लियू ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत समझदार हो, एक समझदार बच्चा तकलीफ में पड़ जाएगा। आगे से जब तुम खेत पर जाओ तो इतना समझदार मत बनो। याद रखें, रोते हुए बच्चे को दूध मिलता है। जिया जी की आंखें लाल हो गईं। यहां तक कि निर्देशक लियू जैसे बाहरी लोग भी उसे यह सलाह देना जानते थे, लेकिन अपने पिछले जीवन में वह इस सच्चाई को समझ नहीं पाई थी। निर्देशक लियू, धन्यवाद। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से सीमांत निर्माण में अपनी जड़ें जमाऊंगा और अपनी युवावस्था मातृभूमि को समर्पित करूंगा। जब जिया जी ने नारा लगाना समाप्त किया तो वह मुड़ा और सहकारी समिति की ओर तेजी से बढ़ा। सहकारी समिति में सब्जियां खरीदने के लिए कतार में खड़े होने के दौरान मुझे अंततः राहत महसूस हुई। लियू परिवार और गु परिवार ने एक साथ दोपहर का भोजन किया और मेजबान और मेहमानों दोनों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान यह एक दुर्लभ अवसर था और मुझे वास्तव में मांस और सब्जियों से भरा एक कटोरा मिला और आज मैंने बहुत खाया। निर्देशक लियू और उनकी पत्नी गु परिवार को विदा करने के बाद शराबी दंपति घर में छिप गए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। निदेशक लियू और उनकी पत्नी ग्रीष्म संक्रांति से बहुत संतुष्ट हैं। मैंने जिया जी को जानबूझकर बाहर भेज दिया। उन्होंने निदेशक लियू और उनकी पत्नी के साथ इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। 3 दिन बाद जिया जी और निर्देशक लियू का बेटा अपना विवाह प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। तब तक यू गुइजियांग वहां पहुंच चुकी होगी और वह बिना कुछ कहे जिया जी को विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए जरूर मजबूर कर देगी। जिस दिन जिया जी को विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा उसका बेटा मशीनरी फैक्ट्री के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट कर सकता है। दंपति इतने खुश थे कि वे अपना उत्साह छिपा नहीं सके और निश्चित रूप से वे आज ग्रीष्म संक्रांति के प्रति बहुत सहनशील थे। जिया जी रसोई में छोटे से पलंग पर अकेला छिप गया और चुपचाप 2 जोड़ी कपड़े पैक कर लिए। बदलने के लिए कपड़े के कुछ ही सेट थे और अगर वह उन्हें पैक करने की कोशिश भी करता तो 2 सेट नहीं पैक कर पाता। डिंग जियानन से कहें कि वह अपने पास मिले पैसे और खाद्य कूपन, साथ ही परिचय पत्र और घरेलू पंजीकरण हस्तांतरण प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें। जिया जी ने बाकी समय हमेशा की तरह पूरे परिवार के लिए रात का खाना पकाने में बिताया। एक ही समय पर बर्तन धोएं और घर की सफाई करें। फिर मैं रसोई घर के छोटे से डिब्बे में छिपकर चुपचाप समय बीतने का इंतजार करने लगा। पूरा परिवार जल्दी ही सो गया। इस समय लोगों के पास शाम को कोई मनोरंजन गतिविधि नहीं होती, इसलिए वे जल्दी सो जाते हैं। मूलतः सभी लोग 8 या 9 बजे सो जाते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान जब घड़ी में 10 बजते हैं तो इसका मतलब है कि 10 बज चुके हैं। हम 10 बजे जियानान स्क्वायर पर मिलने के लिए सहमत हुए। जिया जी ने अपनी बाहों में बैग को छुआ, खड़ा हुआ और चुपचाप बाहर चला गया। यदि आप छोटे रसोई घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको लिविंग रूम से होकर गुजरना होगा। ग्रीष्म संक्रांति के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए मेरा दिल मेरे गले में आ गया था। घड़ी की टिक टिक की आवाज मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रही थी। उसका हाथ दरवाजे के ताले पर था। जब वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, गुहान, जो सिंगल बेड पर लेटा हुआ था, वास्तव में पलट गया। जिया जी ने अपनी सांस रोक ली। उसका पूरा शरीर धनुष की तरह तना हुआ था। वहां निश्चल खड़ा रहा, बस अपने दिल में भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपकी आंखें खोल दे, उसे जीने का मौका दो। गुहान करवट बदल कर फिर से गहरी नींद में सो गया। उसके हल्के खर्राटों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जिया जी ने अंततः दरवाजा खोला। जिस क्षण वह दरवाजे से बाहर निकला और उसे धीरे से बंद किया, जिया जी ने अंततः राहत की सांस ली। जिया जी जल्दी से छात्रावास की इमारत से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं छात्रावास की इमारत से बहुत दूर निकला, मैंने पीछे मुड़कर अंधेरी खिड़की की ओर देखा। उसने वह घर छोड़ दिया जहां वह 18 वर्षों से रह रही थी। जिया जी तेजी से दक्षिण चौक की ओर दौड़ी और रेलवे स्टेशन जाने के लिए ट्रक पकड़ा। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। अंधेरे में जिया जी ट्रक के कोने में अकेला बैठा था। उसने बैग को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। ये तो एक शुरुआत है। मैं रेलवे स्टेशन पर घबराहट के साथ पहुंचा और अंततः जब मैं अन्य लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ा तो राहत की सांस ली। मुझे भीड़ में एक सीट मिल गई और मैंने देखा कि मेरे चारों ओर हर व्यक्ति अलग अलग आकार के बैग लेकर घूम रहा था। मैं चाहता हूं कि मैं अपने परिवार को खेत में ले जा सकूं। केवल जिया जी एक पतला बैग ले जा रहा था और उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। रेलगाड़ी शीघ्र ही चलने लगी। जिया जी ने कुछ नहीं कहा। उसने बैग अपने नितंबों के नीचे रखा, अपनी सीट पर बैठ गया, खिड़की से टिक गया और आंखें बंद कर ली। आखिरकार इस जगह को छोड़कर वह यहां कभी वापस नहीं आना चाहती थी। उसने आखिरकार अतीत को अलविदा कह दिया। जब सूरज उगा, यू गुइजियांग ने अपने कपड़े पहने और घर से बाहर चली गई, लेकिन मेज पर परिचित भोजन नहीं देखा। कमरा शांत और स्थिर था और वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। जिया जी, तुम लानत लड़की, क्या समय हो गया है? सूरज तुम्हारी पीठ पर चमक रहा है, तुम उठकर खाना क्यों नहीं बनाते? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा और मुझे काम पर जाना है? अगर हम काम पर नहीं जाएंगे और पैसे नहीं कमाएंगे तो तुम भूख से मर जाओगे। तुम बहुत आलसी हो, भूल जाओ। अपनी जैसी आलसी किसी और लड़की को देखो, वह पहले से ही 18 साल की है। एक हाथ ने छोटे डिब्बे का पर्दा खोला और देखा कि अंदर से वह खाली था और वहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बिस्तर पर करीने से तह की हुई रजाई को देखना, ये स्पष्ट था कि बिस्तर पर सोया नहीं गया था। युगुइजियां का सिर घूम गया और वह थोड़ी घबरा गई। गुहान, जियाजी कहाँ है? जियाजी कहाँ गई? उसने अपना सिर घुमाया और गुहान से पूछा, जो अपनी आंखें रगड़ रहा था और स्तब्ध होकर बैठा हुआ था। माँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ गई? क्या वह उस छोटे से कक्ष में नहीं है? फादर गु, जो आवाज सुनकर एक जूता घसीटते हुए बाहर भागे, ने पूछा, क्या हुआ? इतना शोर शराबा किस बात का? ग्रीष्म संक्रांति को क्या हुआ? पिताजी, लगता है बच्चा कल रात घर में सोया ही नहीं। युगुइजी आंख थोड़ी घबराई हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हल्ला मत मचाओ, हो सकता है कि लड़की आज सुबह कपड़े धोने बाहर गई हो। चलो उसे ढूंढते हैं। दंपति किसी को ढूंढने के लिए बाहर गए। मैंने शौचालय, शौचालय, कैंटीन और बाहर स्थित स्नैक बार सहित हर जगह खोज की। मैंने रास्ते में पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। दंपति ने अपने सिर से पसीना पोंछा और गलियारे के दरवाजे पर लौट आए। संयोग से मेरी मुलाकात निदेशक लियू से हुई, जो अपने हाथ में एक प्रमाण पत्र पकड़े हुए थे। निर्देशक लियू ने जब दंपति को थकान के कारण पसीने से तरबतर देखा तो वे अपनी हंसी रोक नहीं सके। मैं तुम दोनों को ढूंढने ही जा रहा था। निर्देशक लियू, क्या हो रहा है? युगुइजियांग पहले से ही घबराया हुआ था और ये देखने के लिए घर जाना चाहता था कि क्या वह मृत लड़की वापस आ गई है। ये लड़की गायब है, मेरे बेटे की नौकरी का क्या होगा? यह अच्छी बात है, लीजिए युगुइजियांग गु चेंगोन, यह आपके परिवार का गौरवशाली परिवार पुरस्कार प्रमाण पत्र है, जो विशेष रूप से हमारी पड़ोस समिति द्वारा प्रदान किया गया है। युगुइजियांग अपने हाथ में चमकदार लाल प्रमाण पत्र पकड़े हुए थी। वह थोड़ा उलझन में थी, लेकिन कम से कम जब उसने शानदार परिवार के बारे में सुना तो वह मुस्कुराई। निर्देशक लियू, मैंने नहीं सुना कि हम एक शानदार परिवार कैसे बन गए। ये सब आपके परिवार की जियाजी की बदौलत है। आप लोगों ने एक बच्चे को विवेक के साथ पाला है। युगुइजियांग को यह सुनकर लगा कि कुछ ठीक नहीं है। निर्देशक लियू, जियाजी ने क्या किया? आपके परिवार का ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन आपके लिए भोजन बचाने के लिए है, ताकि आपके परिवार को कोई कठिनाई न हो। मैंने सीमा निर्माण में सहयोग देने के लिए हस्ताक्षर किए और कल रात ट्रेन से रवाना हो गया। जियाजी के सीमांत निर्माण में सहयोग देने की वजह से ही आपके परिवार को सम्मान परिवार का दर्जा मिला। आपको उस छोटी बच्ची का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे डर है कि मैं आप पर बोझ बन जाऊंगा। जब युगुइजियांग ने यह सुना तो उसके हाथ में रखा प्रमाण पत्र जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें घूम गईं और वह जमीन पर बेहोश हो गया। पिता गु ने जल्दी से अपनी बहू को जमीन से उठाया। जब निर्देशक लियू ने देखा कि वह किसी को पुरस्कार प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो वे इतने उत्साहित हो गए कि बेहोश हो गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। मेरे पास उस व्यक्ति को गु के घर वापस भेजने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युगुइजियांग के जागने के बाद वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। निर्देशक लियू जब गु के घर से बाहर आए तो वे भावुक होने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युगुइजियांग अपनी बेटी के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दिल की गहराइयों से इतना टूट जाऊंगा। ये लड़की सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य में सहयोग देने गई थी। आप देख सकते हैं कि उसे उस पर कितना तरस आ रहा होगा। केवल गु परिवार ही जानता था कि दंपति क्यों रो रहे थे। अपने सबसे बड़े बेटे की नौकरी के बारे में रोते हुए वह उड़ गया। जियाजी ने झूमते हुए आंखें खोली। भोर हो चुकी थी और कार की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ग्रीष्म संक्रांति आपको पुनर्जन्म का एहसास कराती है और बहुत आराम महसूस कराती है। आसपास बैठे कई शिक्षित युवक, पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से अपना परिचय देने लगे थे। एक रात गहरी नींद के बाद सभी लोग एक दूसरे को जानने लगे और भविष्य के लिए रास्ता बनाने लगे। जियाजी ने चारों ओर नजर दौड़ाए और महसूस किया कि इस जीवन में वह और डिंग जियानन अपने पिछले जीवन की तुलना में एक साल पहले सीमा निर्माण का समर्थन करने गए थे। मैं वास्तव में कुछ परिचित चेहरों से मिला। लियू जियान उसके सामने बैठा था। काले फ्रेम वाला चश्मा पहने वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह दिखते हैं। उनके हाथ में आमतौर पर कोई अखबार या किताब होती है, लेकिन इस व्यक्ति का चेहरा तो मीठा है लेकिन दिल कड़वा है। इस तथ्य से मूर्ख मत बनिए कि वे सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का दावा करते हैं तथा मित्रतापूर्ण तरीके से बात करते हैं, लेकिन कॉलेज में जगह पाने के लिए वे पूरी तरह से क्रूर होते हैं। वह लियू जियान के लिए एक कदम भी है। उसके बगल में बैठा बड़ा और बेवकूफ आदमी लियू कियानजिन बड़ा और मजबूत है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि जब वह बच्चा था तो उसे मस्तिष्क की चोट लगी थी, इसलिए उनकी बुद्धि किशोर स्तर पर ही बनी हुई है। उसका दिल अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग उसे आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। अपने पिछले जीवन में जब वह भूख से बेहोश होने वाली होती थी तो लियू कियानजिन चुपके से अपनी उबली हुई रोटी बचा लेता था और अक्सर उसे उसका आधा हिस्सा दे देता था। यह मूर्ख लड़का बांध बनाते समय जल्दी ही मर गया क्योंकि बांध में रिसाव हो रहा था। गलियारे के उस पार एक जाना पहचाना चेहरा था, वह उसका प्राणघातक शत्रु था। अपने पिछले जीवन में गुहान के अलावा पुनर्ग्रहण क्षेत्र में उसके कई प्राणघातक शत्रु थे। ये हमारे सामने चेन्यू में ही है। हितैषी और शत्रु एक साथ इकट्ठे हुए, इससे लोगों को सचमुच आराम महसूस होता है। रेल यात्रा में 3 दिन और 3 रातें लगती हैं, लेकिन जब रात के खाने का समय आया तो जियाजी को थोड़ा अजीब लगा। हर किसी को अपनी जेब में कुछ सूखे बिस्कुट या उबले हुए बंस रखने पड़ते हैं। जो लोग बेहतर जीवन जीते हैं उनके पास अंडे, बिस्कुट और अन्य चीजें भी होती हैं। उसकी जेब खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ गर्म पानी पीने के लिए एक कप चाय भी नहीं है। क्या उसने यह नहीं देखा कि उसके आसपास के लोग उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे? उन्होंने गरीब लोगों को देखा था, लेकिन इतना गरीब कभी किसी को नहीं देखा था। इन दिनों अपनी संपत्ति का दिखावा करने से आपकी जान जा सकती है, लेकिन अत्यधिक गरीब होने से आप अपना सिर भी ऊंचा नहीं रख पाएंगे। जिया जेड के पास कल रात तैयारी करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि समय बहुत कम था। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो जियाजी ने देखा कि कुछ लोग पैनकेक निकालने और हरी प्याज लपेटने लगे हैं, इसलिए उसने उनसे बचने का फैसला किया। किसी बड़े स्टेशन तक पहुंचने में शायद 2 घंटे और लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि वहां पहुंचने पर मुझे कुछ बहादुर विक्रेता मिल जाएंगे जो मुझे कुछ खाने पीने का सामान खरीदने में मदद कर सकें। आज सभी स्टॉप छोटे थे और ट्रेन ज्यादा देर तक नहीं रुकी, इसलिए सामान बेचने के लिए ज्यादा लोग ट्रेन में नहीं चढ़े। जियाजी पूरे दिन भूखी रही। मैंने कल रात पर्याप्त खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे अभी थोड़ा चक्कर आ रहा है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान मैं अपना पेट भरने के लिए थोड़ा पानी पीना चाहता था, लेकिन वहां एक कप चाय भी नहीं थी। मैं इस बार जल्दबाजी करने और अच्छी तरह से तैयार न होने के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि समय बहुत कम है। बच निकलना एक वरदान है। अगर गलती से गो परिवार में किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जियाजी ट्रेन के दरवाजे पर छिप गई। क्योंकि लोगों को यहाँ से ट्रेन से उतरना पड़ता है, इसलिए यहाँ कोई नहीं बैठता। अगर कोई यहाँ बैठ भी जाए तो कंडक्टर उसे भगा देता है। जैसे ही जियाजी उस स्थान पर पहुंचा, उसने पाया कि वहां पहले से ही लोग मौजूद थे, लेकिन मेरे अंदर जाने के बाद वापस लौटना और चले जाना थोड़ा असभ्य लग रहा था, विशेषकर तब जब दूसरा व्यक्ति वर्दी में हो। इस प्रकार के विशेष वस्त्र स्पष्टतः किसी विशेष इकाई से संबंधित हैं। ये निश्चित रूप से एक बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये व्यक्ति भी धूम्रपान करने के लिए यहाँ छिपा होगा। जब उसने जियाजी को आते देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथ में सिगरेट का बद जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैर से कुचल दिया। जियाजी एक तरफ खड़ी होकर खिड़की के बाहर सड़क के किनारे के दृश्य को देखती रही, जो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। हालांकि उसने अपनी आंखें कार की खिड़की से बाहर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी नजर बगल में खड़े आदमी के हाथ में रखे एल्यूमिनियम लंच बॉक्स पर पड़ी। लंच बॉक्स का ढक्कन खोला गया और उसके अंदर 2 मोटे सफेद बंद थे। यद्यपि यह साधारण था और इसमें कोई साइड डिश भी नहीं थी, फिर भी जियाजी गेहूं के स्वाद वाले उबले हुए बंस की शुद्ध आटे की सुगंध सूंघ सकती थी। मैं पूरे दिन भूखा रहा और अब मैंने भाप से पके हुए बन देखे, और वे बड़े सफेद भाप से पके हुए बन थे। जो झेंगान ने कार की खिड़की की ओर सिर करके अपने बगल में बैठी लड़की को देखा। पीछे से लड़की कार की खिड़की से बाहर के दृश्य को गंभीरता से देख रही थी, लेकिन वह अंधा नहीं था। लड़की की नजर कार की खिड़की के शीशे से उसके हाथ में रखे लंच बॉक्स में रखे भाप से पके बंस पर टिकी हुई थी। उसके मुंह के कोनों से संदिग्ध तरल पदार्थ बह रहा था। जो झेंगान ने भाप से पके हुए बन को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, जब से वह पैदा हुआ है उसने जो कुछ भी खाया है उसका कोई स्वाद नहीं है। उसमें स्वाद की कोई भावना नहीं है। उसके मुंह में मीठा, खट्टा, कड़वा, मसालेदार और नमकीन सभी का स्वाद एक जैसा होता है, इसलिए उसे भोजन के प्रति कभी कोई अपेक्षा या लालसा नहीं होती। अगर आप इस उबले हुए बन को खाते भी हैं तो यह आपके शरीर की सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। असल में एक ही काफी है। इस उबले हुए बन से उन लोगों की मदद करें जो मदद कर सकते हैं। जो झेंगान ने लंच बॉक्स सौंप दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है बेटी? स्टीम्ड बन खा लो। चिंता मत करो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जियाजी अचानक घूम गया। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कि किसी भूखे भेड़िए ने मोटा मांस देख लिया हो। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आजकल अच्छे लोग तो हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने दयालु नहीं हैं कि अपने बड़े सफेद स्टीम्ड बन दूसरों को दे दें। जियाजी को लगा कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अश्लील और शर्मनाक थी। मैंने निगलते हुए महसूस किया कि मेरे मुंह के कोनों से लार बह रही थी। उसने अपनी आस्तीन से मुंह का कोना पोंछा मानो खुद को ढक रही हो। ऐसा नहीं था कि उसे सफाई पसंद नहीं थी, पर उसके बदन पर कोई रुमाल नहीं था। धन्यवाद कॉमरेड, मुझे भूख नहीं है। गल्प गल्प गल्प। उसके पेट की गड़गड़ाहट ने जियाजेड के झूठ को उजागर कर दिया। जियाजी का चेहरा अचानक लाल कपड़े की तरह हो गया। उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया और दर्द से लगभग चीख पड़ा। वह लगभग सामाजिक मृत्यु के कगार पर था। झो झेंगान ने मजाक में मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स फिर से आगे बढ़ा दिया। कॉमरेड, मुझे पता है कि तुम भूखे हो, खा लो, सब ठीक है। ये देखकर कि जियाजी अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, उसने लंच बॉक्स सीधे जिया जेड के हाथों में थमा दिया। खाओ, विनम्र मत बनो, लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जियाजी का मुंह फड़क उठा। यह आश्चर्यजनक है कि आजकल वर्दीधारी लोगों का विश्वास इतना ऊंचा है। वह वास्तव में अन्य लोगों का खाना मुफ्त में नहीं खा सकती थी, इसलिए वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और वह सीमा पर भूख से मर नहीं सकती थी। मेरा नाम जियाजी है, कॉमरेड आपका नाम क्या है? झो झेंगान ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और उस शर्मनाक दृश्य के कारण शर्मिंदा और हीन महसूस किया जो उसने अभी अभी देखा था। मेरा नाम झो झेंगन है, मैं निर्माण कार्य में सहयोग देने के लिए सीमा पर गया था। मैंने आज तुम्हारा स्टीम बन खाया और मैं भविष्य में तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। जियाजी ने एक भाप से पका हुआ बन लिया, उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर लंच बॉक्स को झो झेंगन की बाहों में वापस रख दिया। इस समय खाना एक अनमोल चीज है, लोग दूसरों को उबली हुई मक्के की रोटी का एक टुकड़ा भी देने से कतराते हैं, झो झेंगन की उबली हुई रोटी तो सफेद आटे की रोटी है। एक वयस्क व्यक्ति के भोजन में सिर्फ दो उबले हुए बन होते हैं, आप इतने नासमझ नहीं हो सकते कि उसके उबले हुए बन में से एक को सीधे खा लें, यह अनुचित होगा। शुक्रिया, मैं उस कार में हूँ, चिंता मत करो, वहां पहुंचते ही मैं उसे तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। मुझे तुम्हारा नाम पता है, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। झो झेंगान ने अपना हाथ हिलाया और जब उसने लड़की को मुड़कर जाते देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि मुझे इसका स्वाद फीका लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि लड़की को ये स्वादिष्ट लगेगा। ग्रीष्म संक्रांति, ये नाम सचमुच अच्छा है। लड़की के लार टपकाने के बारे में सोचते हुए झो झेंगन को अंततः अपने पेट में भूख महसूस हुई। उसने लड़की द्वारा छोड़े गए उबले हुए बन का बचा हुआ आधा हिस्सा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और एक निवाला खा लिया। झो झेंगान ने अचानक अपनी भौहें उठाई। क्या चल रहा है? जन्म के समय से ही उसने स्वाद की शक्ति खो दी थी और वह जो कुछ भी खाता था उसका कोई स्वाद नहीं होता था और वह एक जैसा ही होता था, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में इस सफेद आटे की रोटी का स्वाद चखा। इसकी सुगंध बहुत तेज होती है और इसे काटने पर इसका स्वाद अवर्णनीय रूप से स्वादिष्ट लगता है। पहले तो उसने सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है। उसने अपने हाथ में पके हुए सभी बंस को बड़े बड़े कौरों में अपने मुंह में ठूंस लिया। जितना ज्यादा वह चबाता गया उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशबू कोई भ्रम नहीं थी। उसे सचमुच एक मीठा और मुलायम स्वाद महसूस हुआ। गेहूं की तेज सुगंध वैसी ही होनी चाहिए जिसे साथी गेहूं की सुगंध कहते हैं। किण्वन और वाष्पीकरण के बाद यह एक विशेष सुगंध पैदा करता है। वास्तव में मुंह में हल्की सी सुगंध आती है। झो झेंगान की आंखें अचानक आंसुओं से भर आईं। क्या हो सकता है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई हो? उसने अधीरता से उबले हुए बन का आधा हिस्सा निगल लिया, फिर दूसरे को पकड़कर मुंह में डाल लिया और खाने लगा। ये सही है, उसकी स्वाद की भावना वापस आ गई है। झो झेंगान हताश होकर गाड़ी की ओर भागा। मैं अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका। झो झेंगान बैठ गया और उसने देखा कि जियोहो, जो उसके बगल में बैठा था, ने अभी अभी एक अंडा छीला था। झो झेंगान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने उसे छीन लिया। यह मुझे दे दो और तुम दूसरा छीन लेना, उसने एक ही बार में उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। वह अंडों का स्वाद चखना चाहता है। बुरे झो, यह कोई बहुत ईमानदारी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अंडे नहीं हैं, तुम तो एक भी छीनने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो उसका स्वाद भी नहीं ले सकते। ये कहने के बाद मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी थी। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और उसके आसपास के कई लोगों ने जल्दी से उसे टोक दिया। लाओ झो, तुम और क्या खाना चाहते हो? मेरे पास कुछ पैनकेक और अचार हैं। इस अचार में मिर्च की चटनी मिलाई जाती है, इसलिए इसका स्वाद खट्टा और मसालेदार होता है। ये कहने के बाद माहौल फिर से शांत हो गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि सभी को एहसास हो गया था कि चाहे किसी भी विषय पर चर्चा की जाए, वह लाओ झो के दुखते मुद्दे को छुएगा। झो झेंगन का चेहरा काला पड़ गया। उसने जोर से चबाया। गलत, यह अंडा फिर से बेस्वाद क्यों हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी उबले हुए बन की गेहूं की सुगंध का स्वाद लिया था, तो फिर उसके मुंह में अंडे का स्वाद चबाने वाले मोम जैसा क्यों था? उसने लंच बॉक्स से भाप से पका हुआ बन उठाया जिसके दो निवाले उसने खाए थे। उसने चाय का कप उठाया और उसका आधा हिस्सा पी लिया, फिर भाप से पके हुए बन का एक और निवाला खाया। झो झेंगान की अभिव्यक्ति कुछ अप्रत्याशित थी। उसके आसपास के लोग उसके चेहरे को देख रहे थे जो कभी नीला और कभी लाल हो रहा था, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि झो झेंगान के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा कि उन्होंने अभी जो कहा उस पर ध्यान नहीं दिया और झो झेंगान को चोट पहुंचाई, लेकिन लाओ झो आमतौर पर इतना तुच्छ व्यक्ति नहीं है। कौन जानता था कि झू झेंगान ने भाप से पका हुआ बन अपने मुंह में डाल लिया और भौहें चढ़ाते हुए उसे बार बार चबाया। वह निश्चित रूप से उबले हुए बंस का स्वाद ले सकता था। मजबूत गेहूं सुगंध और हल्की मीठी खुशबू। झू झेंगान ने दूसरों के हाथों में रखे भोजन पर नजर डाली। क्या चल रहा है भाई ली? मुझे पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ने दो। भाई ली अपने हाथ में हरे प्याज से लिपटा एक पैनकेक पकड़े हुए थे और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे आगे बढ़ा दिया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, अगर तुम खाना चाहो तो सब खा सकते हो। झू झेंगान ने पैनकेक लिया और एक बड़ा निवाला खाया। उसमें कोई स्वाद नहीं था, सचमुच कोई स्वाद नहीं था। झू झेंगान ने अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा। उसे उबले हुए बंस का स्वाद तो आ रहा था लेकिन किसी और चीज का स्वाद नहीं आ रहा था। क्या ये सच है कि केवल डाइनिंग कार से लाए गए स्टीम्ड बंस ही स्वादिष्ट हो सकते हैं? झू झेंगान ने फिर से पैनकेक नीचे रख दिया और पीछे मुड़कर देखा कि अन्य साथी क्या पकड़े हुए थे। अंततः मुझे वे भाप से पके हुए बन दिखे जो मैंने और उसने निकाले थे। वह दौड़ कर गया, भाप से पका हुआ बन उठाया, एक टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी आंखों में निराशा थी। अभी भी उसमें कोई स्वाद नहीं था। ये भाप से पका हुआ बन उससे बिल्कुल अलग था जो उसने अभी खाया था। बूढ़े जो, तुम्हें क्या हुआ है? बचपन के उसके सबसे अच्छे दोस्त जियांग येफान ने चिंता से उसका कंधा थपथपाया। लाओ जो अभी अभी सिगरेट पीकर लौटा था और पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। जियाओ जियांग, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए चुप रहने दो। झू झेंगान ने जियांग येफान को धक्का दिया और वापस गाड़ी के दरवाजे की ओर चला गया। उसने झुंझलाहट में अपने हाथ से बक्से पर हथौड़ा मारा। ऐसा कैसे? सब कुछ ठीक था, केवल एक अप्रत्याशित बात घटी कि जियाजी नाम की लड़की ने उसकी भाप से पकी रोटी का आधा हिस्सा तोड़ दिया। क्या इसका संबंध ग्रीष्म संक्रांति से हो सकता है? झू झेंगान ने खिड़की के बाहर से गुजरते दृश्यों को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसे कैसे समझाएं? अभी अभी उसने जो स्टीम्ड बन खाया था उसमें अचानक गुणात्मक परिवर्तन आ गया। झू झेंगान कई घंटों तक यहाँ अकेले खड़े रहे। यात्री ट्रेन से उतरते रहे और कंडक्टर उसे भगाते रहे। झू झेंगान को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्य में फंस गया हो। लेकिन स्वाद चखने का एहसास सचमुच लत लगाने वाला होता है। कोई भी उसे उस उबाऊ जीवन में वापस जाने की अनुमति नहीं दे सकता था। झू झेंगान देर रात तक वहीं रहे। अंततः उनकी हालत में सुधार हुआ। उसने अपना मन बना लिया है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसे कोशिश तो करनी ही थी। क्या इसका उस लड़की से कोई लेना देना था? क्या यह उस लड़की की वजह से था या ये सिर्फ एक भ्रम था? अगर उसे ठीक से याद है तो लड़की ने बताया था कि उसका नाम जियाजी था और उसे अगली गाड़ी से आना चाहिए था। और लड़की ने कहा कि वह सीमा निर्माण में सहयोग करने जा रही है, जिसका मतलब है कि यह इस ट्रेन का अंतिम गंतव्य था। वह कल लड़की को अवश्य ढूंढ लेगा। मैंने स्वयं को मजबूर किया कि मैं अपनी सीट पर वापस जाऊं और सुबह होने तक झपकी लूं। वह सो नहीं सका। उन्हें विशेष सुविधा मिलती है और वे दिन में 3 बार भोजन के लिए निर्धारित भोजन कोटा प्राप्त करने के लिए डाइनिंग कार में जा सकते हैं। झू झेंगान सुबह सुबह अपना लंच बॉक्स लेकर डाइनिंग कार की ओर दौड़ा। नाश्ता अच्छा लग रहा था, जिसमें बाजरे का दलिया, प्रति व्यक्ति 2 उबले हुए बंस तथा अधिक आराम पसंद लोगों के लिए 1 अंडा और अचार की एक छोटी प्लेट थी। आमतौर पर पुनर्ग्रहण क्षेत्र में खाए जाने वाले भोजन की तुलना में ये स्थान स्वर्ग जैसा है। झू झेंगान एक पल के लिए झिझका, ये सोचकर कि लड़की को खाना पहुंचाने के लिए अपने लंच बॉक्स का इस्तेमाल करना अनुचित होगा। फिर उसने डाइनिंग कार में बैठे साथियों से उसके लिए एक बड़ा चाय का कप खरीदने का आग्रह किया। सफेद चाय के कप पर 5 बड़े शब्द लोगों की सेवा करें लिखे हुए हैं। ये साबित करने के लिए कि उसे कोई भ्रम नहीं है, उसने पहले भाप से पके हुए बन का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चखा। अंडों को फोड़ना कठिन होता है तथा फोड़ने के बाद उन्हें लड़की को देना भी कठिन होता है, लेकिन वह उस उबले हुए बन के टुकड़े को गलत नहीं समझ पाया। उसका स्वाद कल खाए गए उबले हुए बन से बिल्कुल अलग था। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे हाथ में चाय का कप पकड़े हुए, झू झेंगान घबराहट में गाड़ी में चला गया। भीड़ में एक एक करके खोजता हुआ उस चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे कल से याद था। जियाजी अपनी सीट पर बैठ गया और अपने पेट को हाथ से दबाया। आधी पकी हुई रोटी वाकई किसी काम की नहीं थी। उसे फिर से भूख लग रही थी, पर वह कुछ खरीद नहीं सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने 1 दिन और 1 रात से पानी नहीं पिया था और उसके होंठ इतने सूख गए थे कि वे छिलने लगे थे। क्या उसने यह नहीं देखा कि उसके सामने बैठा शिक्षित युवक उसे अजीब निगाहों से देख रहा था? जियाजी को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसके पास वास्तव में पानी की कमी थी और इस समय कोई भी किसी और का चाय का कप उधार लेने के लिए सहमत नहीं होगा। लियू कियानजिन, जो उसके बगल में बैठा था, उसके हाथ में भी चाय का कप नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कटोरा था। कटोरे के किनारे पर कई कट थे। जिया जी ने सोचा, अगर वह लियु कियानजिन से कटोरा उधार मांगेगा तो लियु कियानजिन निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। लेकिन उसे डर था कि वह अपने दिल में इस बाधा को पार नहीं कर पाएगी। अगर उसे ठीक से याद है तो लियु कियानजिन ने उसे पहले बताया था कि उसका ये टूटा हुआ कटोरा स्मारकीय महत्व का है, क्योंकि उनका कुत्ता दाहुआंग उसके साथ बड़ा हुआ था। ये वह कटोरा है जिसका उपयोग दाहुआंग खाने और पीने के लिए करता है। बाद में दाहुआंग की मृत्यु हो गई और लियु कियानजिन ने दाहुआंग की स्मृति में उस कटोरे को ले लिया और उसे अपने उपयोग के लिए अनुकूलित कर लिया। जिया जेड के बारे में सोचकर ही मैं अभिभूत हो जाता हूँ। जब मैं यहाँ झिझक रहा था और संघर्ष कर रहा था तो अचानक मेरे कान में एक आवाज सुनाई दी, जिया जी, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। जिया जी ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य और खुशी से भरी दो आंखों से देखा। इसका वर्णन कैसे करें, वे आंखें आकाश में तारों की तरह चमकती हैं। आंखें गौण हैं, मुख्य चीज आंखों में प्रकाश है। स्वयं को पाना दुनिया के सबसे अनमोल खजाने को पाने जैसा है। जो उझेंगन, ग्रीष्म संक्रांति थोड़ी भ्रामक है। मैंने कल उससे आधा स्टीम्ड बन स्वीकार किया था, इसलिए जो उझेंगान को अब कर्ज वसूलने के लिए मेरे घर नहीं आना चाहिए, है ना? जो उझेंगन निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते। क्या मैं गलत समझ गया? उसने बेचैनी से चारों ओर देखा और जैसी की उम्मीद थी, जो उझेंगान की उपस्थिति ने तुरंत बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य कारण ये था कि जो उझेंगान बहुत ही आकर्षक था और उसकी वर्दी उसे दूसरों से स्पष्ट रूप से अलग करती थी। सबकी नजरों में ये दुनिया का सबसे प्यारा इंसान है। इसके अलावा जो उझेंगन के चेहरे की विशेषताएं सामान्य हैं, या यूं कहें कि मुझे उनका वर्णन करने के लिए एक शब्द का उपयोग करना होगा। जो उझेंगान के चेहरे की विशेषताएं न केवल नियमित हैं बल्कि सुंदर भी हैं। उसके चेहरे के नैन नक्श बहुत त्रिआयामी हैं, खासकर उसकी उभरी हुई नाक। उसे बगल से देखने पर ही शायद कई लड़कियां उसकी तारीफ करेंगी। इसके अलावा कपड़ों का ये सेट भी, ये नायक की आभा है। कॉमरेड जिया जी, मैंने अंततः आपको ढूंढ लिया। मैंने अभी अभी फूड ट्रक से कुछ खाना लिया है। मैं इसे सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। उसने मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का कप सौंप दिया और उसने उसे थोड़ा जोर से जिया जेड के हाथ में थमा दिया। यह ऐसी ताकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जिया जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस उसे अपने हाथ में ले लिया। लंच बॉक्स में बाजरे का दलिया था, हालांकि वह उबलता हुआ गर्म नहीं था, फिर भी उसका तापमान जिया जी को चौंका गया। उसने जल्दी से उसे अपने सामने रखी छोटी मेज पर रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके सामने बैठी शिक्षित युवती की निगाहें स्पष्ट रूप से आक्रोश से भरी हुई थीं। जो झेंगान की अचानक उपस्थिति ने स्पष्ट रूप से बहुत ईर्ष्या को आकर्षित किया। या फिर चलो बाहर जाकर बात करें। जिया जी ने जल्दी से एक लंच बॉक्स और एक चाय का कप लेकर जो झेंगन को वापस दरवाजे तक ले गया जहां वे कल खड़े थे। जिया जी ने अंततः राहत की सांस ली जब उसने किसी की निगाह पर ध्यान नहीं दिया। कॉमरेड जो, आप क्या कर रहे हैं? मैं कल ही आपकी दयालुता की सराहना कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे खाना लाने के लिए कैसे कह सकता हूं? कॉमरेड जिया जी, शर्मिंदा मत होइए। आपको अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा आप सीमावर्ती क्षेत्रों के निर्माण में सहयोग करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है। मुझे आपके प्रति अधिक प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, सहायक और एकजुट होना चाहिए। इधर आओ, ये वही खाना है जो मैंने आज सुबह बनाया है। मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक चायदानी भी लाई हूं ताकि तुम उसे आपस में बांट सको। जो झेंगान ने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की। जिया जी ने ये सुना मुख्यतः इसलिए कि उसने चाय के प्याले पर एक नज़र डाली। उसे अभी इसकी बहुत ज़रूरत थी। अगर उसने अभी जो झेंगान को मना कर दिया तो यह पानी को ठुकराने जैसा होगा। वह कुत्ते का कटोरा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। मैंने दांत पीसते हुए सोचा कि चूंकि कल ही मुझ पर उसका आधा स्टीम्ड बन बकाया था, इसलिए थोड़ा और देने में कोई हर्ज नहीं है। कॉमरेड जो झेंगान, धन्यवाद। अब से हम क्रांतिकारी कॉमरेड होंगे। जब हम पुनर्ग्रहण क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा और ये चीजें आपको वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटा सा उपकार है, इसे दिल पर मत लो। जो झेंगान को थोड़ा संकोच हुआ क्योंकि वह बुरे इरादे से यहाँ आया था। यद्यपि वह दूसरों की मदद करने को तैयार है, लेकिन इसमें अन्य उद्देश्य भी शामिल हैं और उद्देश्य शुद्ध नहीं है। दूसरों की मदद करने का प्रारंभिक बिंदु पूरी तरह से अस्थिर है। जिया जी को होश आया और उसने स्वाभाविक रूप से अपने लंच बॉक्स से बाजरे का आधा दलिया बाहर निकाल दिया। बाजरे का दलिया देखकर उसे थोड़ा लालच आया और फिर उसने आधी पकी हुई रोटी ले ली। मैंने चाय के कप के ढक्कन पर कुछ कटा हुआ अचार भी डाल दिया। मैंने अंडे नहीं लिए। अंडे पौष्टिक उत्पाद हैं और केवल जो झेंगन जैसी विशेष प्रतिभाएं ही इस उपचार का आनंद ले सकती हैं। आप दूसरों का फायदा नहीं उठा सकते। उन्होंने बचा हुआ लंच बॉक्स जो झेंगान को दे दिया। कॉमरेड जो, धन्यवाद। बस इतना ही काफी है। झू झेंगान ने जिया जी की तरफ देखा। उसने सिर्फ उबले हुए बंस, अचार और दलिया को छुआ था, लेकिन अंडों को नहीं छुआ था। आपका स्वागत है, मैं दोपहर को आपके लिए दोपहर का खाना लाऊंगा। अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो या असुविधा हो तो आप इस दरवाजे पर मेरा इंतजार कर सकते हैं। झू झेंगान को अचानक एहसास हुआ कि उसकी अचानक उपस्थिति लड़की के आत्मसम्मान को आसानी से ठेस पहुंचा सकती है। जिया जेड के कपड़ों को देखकर ही आप बता सकते हैं कि उसका परिवार अमीर नहीं है, अन्यथा वह ट्रेन में भूखा नहीं रहता। झू झेंगान को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लड़की की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी, उसे तो बस अपनी ही परवाह थी। बहुत स्वार्थी। शुक्रिया झू झेंगान, ठीक है तो मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं आपको एक भोजन देने का ऋणी हूँ और मैं आपको कई भोजन देने का ऋणी हूँ। मैं तब यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिया जेड के हंसमुख रवैये ने झू झेंगान को कुछ प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। जिया जी ने अलविदा कहा और चाय का कप लेकर चला गया। झू झेंगान ने फिर अपने हाथ में लंच बॉक्स को देखा और बाजरे के दलिया का एक घूंट लिया। जैसे ही उसने बाजरे का दलिया मुंह में लिया, उसे इतना अच्छा महसूस हुआ कि वह आहें भरना चाहता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कैफेटेरिया में लोग अक्सर कहते हैं कि बाजरे का दलिया सबसे पौष्टिक, सुगंधित और समृद्ध होता है, जिसके ऊपर चावल के तेल की मोटी परत तैरती रहती है। जब वे अक्सर बाजरे का दलिया पीते थे तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब मुझे अंततः पता चला कि यह भावना क्या है। उबले हुए बन का एक और निवाला लिया। झू झेंगान की आंखें लाल हो गईं। इसका स्वाद बिल्कुल कल रात के उबले हुए बंस जैसा था। तेज गेहूं की सुगंध। उसने अचार का एक और निवाला खाया। हर कोई कहता रहता है कि खाने के लिए सबसे खराब चीज अचार है। ये तो नमक बेचने वाले को पीट पीट कर मार डालने जैसा है। मुझे नमकीनपन के अलावा किसी और चीज का स्वाद नहीं आता। लेकिन अब वह इसे ऐसे खाता था जैसे कि यह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो। अंततः उसने सावधानी से अंडा उठाया, उसे छीला और एक टुकड़ा खाया। उसे सब कुछ साफ साफ याद था। वह अंडा अपने हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन जब उसने लंच बॉक्स उसे दिया तो उसने अंडा नहीं दिया। जब उसे स्टीम्ड बंस मिले तो जिया जी ने उसे लंच बॉक्स दिया और उसने लंच बॉक्स में अंडा डाल दिया। इस जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण वर्तमान प्रभाव उत्पन्न हुआ है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जिया जी ने अंडों को नहीं छुआ। इसलिए अंडे के स्वाद की तुलना अन्य चीजों से नहीं की जा सकती। अंडे में अभी भी कोई स्वाद नहीं है। झू झेंगान अंडे खा रहा था जब वह अचानक हंसने लगा। वह हंसी और फिर उसने अपने हाथ खिड़की पर टिका दिए और फिर से रोने लगी। गलियारे से गुजरते लोग उसकी पीठ की ओर इशारा करते हुए सोच रहे थे कि इस आदमी को क्या हो गया है। झू झेंगान फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार उसे समझ आया कि वह सिर्फ उसी खाने का स्वाद ले सकता है जिसे जिया जी ने छुआ था। उसे नहीं पता था कि इसका कारण क्या था, लेकिन कम से कम अब उसकी जिंदगी का स्वाद अलग है। वह उबले हुए बंस की मीठी खुशबू जानता है, वह अचार का नमकीन स्वाद जानता है और वह बाजरे के दलिया का चिपचिपा और नरम स्वाद भी जानता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जिया जी कौन है या उसमें क्या खासियत है। उसे बस ये जानना था कि जिया जी उसकी पसंद की चीज है। जिया जी चाय का कप पकड़े हुए अपनी सीट पर लौट आया। लियू जियान, जो सामने बैठी थी और अपने हाथ में काले आटे की भाप से बनी रोटी चबा रही थी, ने अचानक अपना चश्मा आगे बढ़ाया और उत्सुकता भरी नजर से पूछा, जिया जी, अभी अभी वर्दी में वह साथी कौन था? एक मित्र। जिया जी ने झू झेंगान के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया। पहली बात तो ये कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, झू झेंगान जो वर्दी पहनते हैं वह उन्हें प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। वह अब भी बहुत कमजोर है, खासकर इसलिए क्योंकि पहले दिन कार में जो कुछ हुआ वह बहुत अप्रिय था। अब हर कोई उसे तिरछी निगाहों से देख रहा है और भविष्य में उसे बहिष्कृत करना तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देगा। ये सही है, दुनिया में लोगों के बीच इस तरह का बहिष्कार और नापसंदगी इसलिए नहीं है कि आपके और मेरे बीच कोई दुर्भावना है, बल्कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग आपको गरीब होने के कारण नीची नजर से देखते हैं। मैं आपके ऊपर कदम रखकर ये दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि मैं कितना अलग हूँ। जिया जी को मानना पड़ा कि उसे अभी भी आश्रय की जरूरत है। उसके पास सब कुछ करने की क्षमता नहीं है, खासकर अगर वह पुनर्ग्रहण क्षेत्र में जाती। अगर सब उसे छोड़ दें तो उसका जीवन आसान नहीं होगा। वह धमकाए जाने से नहीं डरती, लेकिन उसे पहले से ही अपने लिए कई अकल्पनीय दुश्मनों को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम लियू जियान है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें वहां बिना कुछ बोले बैठे देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच किसी को जानते हो। जिया जी ने उदास आंखों से लियू जियान की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछले जन्म में दोनों ने मौत से भी ज्यादा लड़ा होगा। इस औरत ने मेरे साथ बहुत सारी चालें चली, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियू जियान इस जीवन में उसके प्रति दया दिखाने की पहल करेगा। मेरा नाम जिया जी है। लियू जियान बहुत चालाक और निर्दयी है। उसके जैसी महिला खेत में काम करते हुए वाकई एक बेहतरीन इंसान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियु जियान प्यार के जाल में नहीं फंसी है। वह बहुत शांत है, हालांकि खेत पर कई शिक्षित युवाओं के साथ उसके कुछ अस्पष्ट रिश्ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जागते रहें। हमने खेत पर शादी नहीं की थी, इसलिए हम सबसे पहले वहां से निकले और वापस लौटे। जब आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं तो दुश्मन क्यों बनाएं? क्या आपका जन्म ग्रीष्म संक्रांति के दिन हुआ था? लियु जियान को अपने सामने खड़ी लड़की में अधिक रुचि हो गई। मेरे सामने ग्रीष्म संक्रांति का मौसम उस एहसास से बिल्कुल अलग लग रहा है जो मुझे शुरुआत में हुआ था। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है और इतनी ठंड है कि लोग दूर ही रहते हैं। बाद में सभी ने इस बारे में बात की और निजी तौर पर कहा कि लड़की का परिवार इतना गरीब होगा कि उन्होंने उसे सूखा खाना भी नहीं दिया। उसे उस लड़की से बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला। बेशक इसकी मुख्य वजह यही थी कि उसने उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार कर लिया था और उसे लगा कि ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि पुनः प्राप्त क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप स्वयं पर बोझ बनने से बच सकें। ऐसे लोग संभवतः मुझसे मित्रता करने के लिए बहुत इच्छुक होंगे, लेकिन बाद में इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद उसने अचानक अपना मन बदल लिया। हालांकि यह लड़की दूसरों से बात नहीं करती, शायद इसलिए नहीं कि उसका परिवार गरीब है। हो सकता है कि उसके परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति आई हो। आप ऐसा क्यों अनुमान लगाते हैं? मुख्य कारण यह है कि जियाजी का स्वभाव ऐसा नहीं है जिसे कोई साधारण परिवार अपना सके। हालांकि जियाजी दिखने में बहुत गरीब है, फिर भी वह शांत रह सकता है और दूसरों की फुसफुसाहट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सकता है। यह उस तरह का गुस्सा और अपमान नहीं है जैसा कि सामान्य तरीके से पले बड़े कैडरों के बच्चों में होता है। इस तरह का व्यक्ति इस बारे में बहुत स्पष्ट होता है और बहुत सी चीज़ों से गुजर चुका होता है। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कॉमरेड जो सुबह दिखाई दिए तो उन्होंने उत्साहपूर्वक जिया जैद के लिए भोजन लाया। ये देखा जा सकता है कि हालांकि कॉमरेड जो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस ग्रीष्म संक्रांति के बारे में उनके शब्द बहुत सौहार्दपूर्ण थे। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भूखे नहीं मर रहे हैं, बल्कि कोई उन्हें खाना पहुंचा रहा है। एक और बात यह है कि कॉमरेड जो की वर्दी बहुत कुछ कह रही है। जब ऐसे लोग पुनः प्राप्त क्षेत्र में पहुंचेंगे तो वे निश्चित रूप से आम लोगों की तरह कठिन जीवन नहीं जिएंगे। लियु जियान बहुत आत्म जागरूक है और स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों से दोस्ती करती है जो उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वह कहीं भी जाए। जाहिर है इस समय किसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे बेचारे जियाजी को चिढ़ाने में ज्यादा रुचि रखते हैं जो उसे दोस्त बनने का एहसास दिलाता है। जियाजी ने बाकी समय कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना बाजरे का दलिया और उबले हुए बन खाए। हालांकि इतना सारा खाना खाने के बाद भी उसे पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये कल भूखे रहने से बेहतर था और वह दोपहर के भोजन का इंतजार कर रही थी। सुबह का भोजन इतना भरपूर था कि दोपहर का भोजन भी उसे निराश नहीं करेगा। लियु कियानजिन, जो उसके बगल में खड़ा था, ने सफेद आटे के बंस का एक तिहाई हिस्सा ले लिया और उसने फफूंद लगे काले आटे के बंस खा लिए। जब जियाजी ने उसे ये दिया तो उसने जानबूझकर सभी से दूरी बना ली, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग ये सोचें कि वह अमीर है। अन्यथा कुछ लोग आएंगे और इसमें शामिल होने का प्रयास करेंगे। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल एक निवाला खाने के लिए ही इतने बेशर्म हो जाते हैं। यद्यपि लियु कियानजिन मूर्ख है और उसकी बुद्धि कम है, सौभाग्य से वह एक बात को सबसे अच्छी तरह समझता है, भूखा रहना असुविधाजनक है। जब मुझे सफेद आटे की रोटी मिली तो मैंने उसे एक ही बार में अपने मुंह में ठूंस लिया। दूसरों के पास तो देखने का भी समय नहीं था, और क्योंकि लियु कियानजिन ने ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सफेद आटे की बंस खाई थी, इसलिए जाहिर है कि उसने ग्रीष्म संक्रांति को बहुत अच्छी तरह से माना था। कभी कभी मैं जियाजी को चाय का कप धोने में मदद करता था और कभी कभी मैं जियाजी को पानी उबालने में मदद करता था। यद्यपि जियाजी अवाक रह गया जब उसने अपने हाथों को देखा जो फटे हुए थे और शीतदंश से ग्रस्त थे, वह इस दयालु व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जब मैं रिक्लेमेशन एरिया में पहुंचा तो मुझे खुद ही फ्रॉस्टबाइट क्रीम बनाने का तरीका ढूंढना पड़ा। जब मैं रिक्लेमेशन एरिया में था तो मैं हर साल खुद ही यह फ्रॉस्टबाइट क्रीम बनाता था क्योंकि इसे बाहर से खरीदना बहुत महंगा था। आप इतनी अच्छी गुणवत्ता कहीं और नहीं खरीद सकते। यदि आपको शीतदंश हो गया तो यह आपको हर साल होगा। संभवतः लियु जियान ने ही बात शुरू की थी। वास्तव में जियाजी को अपने पिछले जीवन में पता था कि लियु जियान निश्चित रूप से किसी के साथ भी दोस्ती कर सकती है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियु जियान मुझे इस जीवन में दोस्ताना संदेश भेजेगा। जियाजी ने मना नहीं किया और अपने पिछले जीवन की घृणा के बारे में गंभीरता से बात की। इसमें केवल नैतिक स्तर शामिल है, कानून का शासन नहीं। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे कानून के शासन को चुनौती देने वाली व्यक्ति नहीं हैं। यदि हम शत्रुता को मित्रता में बदल सके तो यह असंभव नहीं है। यद्यपि जियाजी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके पास अपने पिछले जीवन का समृद्ध अनुभव है, इसलिए वह जो भी शब्द कहता है वह मुद्दे पर सटीक बैठता है। इसके बजाय इसने लियु ज़ियान को इस ग्रीष्म संक्रांति की गहरी समझ दी। लियु ज़ियान के बगल में बैठा व्यक्ति स्पष्ट रूप से लियु ज़ियान का दोस्त था, इसलिए उनकी सीटों के आसपास का क्षेत्र अचानक जीवंत हो गया। वह व्यक्ति जो अभी तक जियाजी को नीची नजर से देख रहा था अब उनके चैट सर्कल में शामिल हो गया है। लोगों के एक समूह के साथ बातचीत करके समय बिताना आसान था और जल्द ही दोपहर के भोजन का समय हो गया। लियु ज़ियान एक पल के लिए चुप रही। उसने अपने बैग से दो काले चेहरे वाले स्टीम्ड बन निकाले, लेकिन फिर भी जियाजी से कुछ भी विनम्र नहीं कहा। वह ये भी देखना चाहती थी कि ग्रीष्म संक्रांति स्वयं उसे एक विशेष रूप से अत्यंत विरोधाभासी अनुभूति देती है। वह एक गरीब परिवार से लगती है और काफी सुंदर है, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी या सबसे आकर्षक नहीं है। वह ज्यादा बात नहीं करता और उसका व्यक्तित्व भी विशेष रूप से जीवंत नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वह शांत और संयमित है, अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व। ये सब बातें उसके जीवन में रहस्य की एक परत जोड़ती हैं। बेशक लियु ज़ियान ये भी देखना चाहता था कि क्या कॉमरेड जो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे थे जिसे मुश्किल से ही परिचित माना जा सकता था, या क्या उन दोनों के बीच कोई विशेष रिश्ता था। इससे ये निर्धारित होता है कि उसके और जियाजी के बीच संबंध घनिष्ठ है या दूर का। जियाजी ने देखा कि सभी ने खाना निकाल लिया था और गाड़ी पहले से ही विभिन्न खाद्य पदार्थों की गंध से भर गई थी। वह चुपचाप खड़ा हुआ और खाली चाय के कप के साथ गाड़ी को जोड़ने वाले दरवाजे की ओर चला गया। जियाजी को जाते हुए देखकर लियु ज़ियान ने चाय का कप उठाने का नाटक किया। ओह, पानी नहीं है, मैं जाकर गर्म पानी लाता हूँ। चाय का कप पकड़े हुए वह चुपचाप जियाजी के पीछे चला गया। दूरी ज्यादा नहीं थी, केवल 10 मीटर की दूरी थी। जियाजी को गाड़ियों को जोड़ने वाले दरवाजे की ओर चलते हुए देखना। लियु ज़ियान तेजी से पानी वाले कमरे की ओर चली गई। पानी वाले कमरे में पहुंचकर वह जरूर यहां से गुजरेगी। शौचालय कक्ष से आगे बढ़ने से पहले उसने देखा कि एक लंबा व्यक्ति सामने वाली बोगी से उसकी ओर आ रहा है। उसके चेहरे पर खुशी थी और उसके हाथों में दो लंच बॉक्स थे। जो झेंगान उत्साह से अपना लंच बॉक्स लेकर कार के दरवाजे पर आया। उसने अपने पास से गुजर रही युवती की थोड़ी सी हैरानी भरी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। अब उसे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने हाथों में दो छोटे स्टूल भी पकड़ रखे थे। उसने ये कुर्सी बूढ़े हु से छीन ली। बूढ़ा हु उसके बनाए नए स्टूल पर बैठने को तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। जब वह कार के दरवाजे की ओर मुड़ा तो उसने वह आकृति देखी जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रीष्म संक्रांति। जिस क्षण लियु ज़ियान ने मुड़कर देखा उसने जियाजी को मुड़कर झो झेंगोन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मैं थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जियाजी इन लोगों से बातचीत करते हुए ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई खास चमक नहीं थी। जो झेंगन, आप यहाँ हैं? जियाजी मुस्कुराई क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति उसके लिए दीर्घकालिक भोजन का साधन था और उसे कम से कम अगले 3 दिनों तक भोजन के लिए उस पर निर्भर रहना था। किसी को बहुत अधिक हृदयहीन नहीं होना चाहिए, और ये देखा जा सकता है कि जो झेंगान ईमानदारी से उसकी मदद कर रहा है। आज का लंच अच्छा था। चावल और कुछ तले हुए व्यंजन थे। एक था मिर्च के साथ तला हुआ सुअर का मांस, एक था मसालेदार और खट्टे कटे हुए आलू, और एक था पत्ता गोभी और टोफू। मुझे नहीं पता कि आपको मसालेदार खाना पसंद है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने फोन किया। बस जो भी तुम्हें पसंद हो और ऑर्डर कर दो। ओह, और मेरे पास एक छोटा स्टूल है। आपको खाने के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ खाए और फिर वापस चले जाए। अन्यथा आपके आसपास के लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। इस बार जो झेंगान बहुत विचारशील और विचारशील था। यदि आप किसी लड़की को अपने साथ डिनर पर बुलाएंगे तो वह आपकी मदद करेगी। मैं अपनी वजह से जियाजी पर कोई मुसीबत नहीं ला सकता। ये सुनकर जियाजी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि जो झेंगन ऐसा सोचेगा। मैं भावुक और आभारी था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी अजनबी से इतना दोस्ताना व्यवहार कभी नहीं देखा था। इतने अच्छे कि वे दूसरों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। शुक्रिया जो झेंगन, आप मेरा जितना ख्याल रखते हैं, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आखिरकार हम अजनबी हैं। मैंने आपका बहुत फायदा उठाया है। जियाजी ने महसूस किया कि कुछ विनम्र शब्द कहना आवश्यक था। ऐसा मत कहो, असल में मुझे ही शर्मिंदा होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ही तुम्हारे लिए खाना लाकर तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ? जियाजी की बात सुनकर जो झेंगोन समझ गया कि जियाजी कैसा महसूस कर रहा है। उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सोचा कि काश जमीन में कोई गड्ढा मिल जाए जहां वह रेंगकर अंदर जा सके। ओह चलो, इतने विनम्र मत बनो। अगर हम इतने विनम्र बने रहे तो इससे चीजें और भी अजीब हो जाएंगी। लेकिन जो झेंगान, हालांकि कल हम अजनबी थे, मैं आज वास्तव में आपके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना बेकार नहीं खाऊंगा। जब हम रिक्लेमेशन एरिया पहुंच जाएं, तो फुर्सत मिले तो मुझे ढूंढ लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। ठीक है, अब हम दोस्त हैं। चूंकि हम दोस्त हैं, तो चलो ये तमीज भरे शब्द नहीं कहते। चलो खाना खाते हैं। हालांकि जो झेंगान ने अपना रहस्य नहीं बताया, लेकिन लड़की इतनी उदार और हंसमुख थी कि उसके दिल का कोहरा पल भर में छंट गया। वे दोनों छोटे छोटे स्टूल पर बैठ गए। जिया जी ने जब दोनों लंच बॉक्स खोले तो दंग रह गया। एक लंच बॉक्स चावल से भी भरा था और उस लंच बॉक्स में कम 2 किलो चावल थे। जैसा कि जो झेंगान ने बताया, दूसरे लंच बॉक्स में भी 3 सर्विंग भोजन था और वह भरा हुआ था। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि आपको डाइनिंग कार तक ले जाना असुविधाजनक है, अन्यथा आप वहां भोजन कर सकते हैं। कार में मुफ्त गाजर का सूप भी मिलता है। जो झेंगान ने जिया जी को थोड़ी उत्तेजना के साथ देखा। चिंता मत करो, बस लंच बॉक्स को चावल से ढक दो और मैं खाने के लिए ढक्कन का उपयोग करूंगा। जो झेंगान ने अपने क्रॉस बॉडी बैग से 2 जोड़ी चॉपस्टिक निकाली और 1 जोड़ी जिया जी को दे दी। चिंता मत करो, ये चॉपस्टिक साफ हैं। जिया जी को अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने जो झेंगान वास्तव में ईमानदार था। वह सावधान और सतर्क है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अजनबियों के प्रति बहुत गर्मजोशी से पेश आता है। इसलिए उन दोनों ने भोजन को 2 बराबर भागों में बांट लिया। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान पहले चावल के डिब्बे से आधा चावल निकाल लें और फिर आधी सब्जियां डाल दें। फिर लंच बॉक्स के ढक्कन पर रखे चावल को डिश लंच बॉक्स में डाल दें, ताकि आप दोनों में से किसी को भी खाना खाते समय लंच बॉक्स का ढक्कन पकड़ना न पड़े, जो कि बहुत शर्मनाक है। जो झेंगन ने लंच बॉक्स लिया जो जिया जी ने उसे दिया था और उसकी चॉपस्टिक्स उत्साह से हिल रही थी। आज का लंच अलग था। उसके लिए ये खाना ऐसा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार कुछ खास खाया हो। जिया जी ने महसूस किया कि उसका हाथ अभी भी कांप रहा था और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ? क्या ज्यादा प्रशिक्षण के कारण तुम्हारी मांसपेशी खींच गई? जो झेंगन का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह लड़की को बता सकता था कि वह कांप रहा था क्योंकि वह आज के खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये सुनकर जिया जी को राहत मिली। इतनी कम उम्र में पार्किंसन रोग होना असंभव था। जिया जी ने चावल और मिर्च के साथ तले हुए सुअर के मांस को चॉपस्टिक से मुंह में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया। भला मांस कौन नहीं खाना चाहता? ये शरीर लंबे समय से कुपोषित है और मांस देखते ही इसके मुंह में लार लगभग छलक जाती है। जिया जी जल्दी से खाता है, लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित तरीके से खाएं। उसकी अभिव्यक्ति एकाग्र थी और उसकी आंखें भोजन पर टिकी हुई थी, मानो वह अपने सबसे करीबी प्रेमी को देख रहा हो। ये भोजन के प्रति एक प्रकार का स्नेह और आदर है। अगर वह ऊपर देखती तो जो झेंगान को उसके लंच बॉक्स को उसी नजर से घूरते हुए पाती। जो झेंगान ने मिर्च के साथ तले हुए सुअर के मांस को चॉपस्टिक से अपने मुंह में डाला। तीखे और मसालेदार एहसास ने उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसके साथी मिर्च के लिए हमेशा तीखा और मसालेदार शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। खाना इतना मसालेदार था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वह चॉपस्टिक नीचे रखने का साहस नहीं कर सका। मसालेदार और खट्टे आलू के टुकड़े, यहां तक कि टोफू और गोभी, जो देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते, वे भी आपके मुंह में स्वादिष्ट लगते हैं। जो झेंगान ने तेजी से और तेजी से खाना खाया। तो यही है खाने का सही अर्थ, और यही कारण है कि हर कोई भोजन को स्वादिष्ट भोजन कहता है। केवल इसी क्षण उसे अंततः इसका अनुभव हुआ। दोनों ने एक साथ अपने लंच बॉक्स नीचे रखे और संतुष्टि से अपने पेट को छुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि दूसरे व्यक्ति की गतिविधियां बिल्कुल उनकी गतिविधियों के समान थीं, जिससे वे तुरंत हंस पड़े। आज का भोजन सचमुच स्वादिष्ट है। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। अप्रत्याशित रूप से उन दोनों ने एक ही बात कही। जिया जी मुस्कुराया, अपने पेट को थपथपाया और कहा, कॉमरेड जो झेंगन, आपके मैत्रीपूर्ण प्रायोजन के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। जिया जी ने एक कप गर्म पानी भरा और अपनी सीट पर लौट आया। लियू जियान ने ऊपर देखा और जिया जी को देखकर मुस्कुराया। जिया जी ने भी बदले में उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। बाकी यात्रा स्पष्टतः बहुत आसान थी। नाश्ते के समय जो झेंगान 2 लंच बॉक्स लेकर डाइनिंग कार में जल्दी आ गया। वह डाइनिंग कार में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और जब वेटर ने जो झेंगान को देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इस युवक की भूख बहुत ज्यादा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत सक्रियता से खाता है। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, फूड ट्रक अगले 10 मिनट तक नहीं खुलेगा। ठीक है कॉमरेड, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर इंतजार करूंगा। जो झेंगान इन दिनों बस खाने के बारे में ही सोच रहा था और कोई चारा ही नहीं था। बचपन से उसने इस तरह का स्वाद कभी नहीं चखा था। हर खाने से उसे अलग अलग खाने का स्वाद चखने का मौका मिलता था। यदि आप खाने में सक्रिय नहीं हैं, तो आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, बूढ़े जो, पिछले 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बूढ़े बू ने पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और जो झेंगान उसकी चीख से चौंका नहीं। क्या गलत, तुम अभी भी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें खाते समय पहले कभी इतना सक्रिय नहीं देखा। तुम हर बार थोड़ा सा ही खाते हो और खाते हुए ऐसा लगता है जैसे दवा ले रहे हो। इसे देखकर ही लोगों को अजीब सा महसूस होता है। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो आप सबसे अधिक सक्रिय व्यक्ति होते हैं। और अपने आप को देखिए, आपकी लंबाई बढ़ने की उम्र तो निकल चुकी है, लेकिन अब आपके पास एक समय के भोजन के लिए 2 लंच बॉक्स हैं। अब तुम मुझसे ज्यादा खाते हो और जब हम खाते हैं तो तुम कभी दिखाई नहीं देते। तुम खाना कहाँ खाओगे? सच सच बताओ, कुछ गड़बड़ है क्या? जो झेंगोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह दूसरों को यह नहीं बता सका कि उसने पहले भी कुछ खाया है, क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। भोजन में कोई स्वाद नहीं है और सब कुछ एक जैसा ही स्वाद देता है, तो फिर कौन खाना चाहेगा? मैं हाल ही में भूखा रहा हूँ। ठीक है, लाओ जो, तुम बहुत चालाक हो। तुम बस समस्या से बच रहे हो। लाओ जो उसे मत पूछो। मैं तुम्हें बताता हूँ, कल रात जब मैं शौचालय खोजने के लिए अगले डिब्बे में गया तो मैंने उसे और एक लड़की को दरवाजे के पास एक छोटे से स्टूल पर बैठे अंतरंगता से खाना खाते हुए पाया। लड़की, हे भगवान, जो झेंगन, तुम, ये लोहे का पेड़ वास्तव में खिल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब मेरी भूख इतनी बढ़ गई है। अब मेरे साथ खाने वाला कोई है? जब भोजन करने आए कई दोस्तों ने ये सुना तो वे सभी आ गए और जो झेंगान का मजाक उड़ाने लगे। सच बताओ, लाओ जो, क्या तुम्हारा कोई साथी है? अगर है तो तुम्हारा कोई साथी है? तुम्हें अपनी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। पुरुषों को तब विवाह कर लेना चाहिए जब वे पर्याप्त आयु के हो जाएं, और महिलाओं को भी तब विवाह कर लेना चाहिए जब वे पर्याप्त आयु की हो जाएं। ये सही नहीं है। हमारी टीम में कोई महिला साथी नहीं है। ओह लाओ जो, तुम सच में बहुत अच्छी हो। रास्ते में तुम्हें एक मिल जाएगी। जो झेंगान को देख रहे कई लोगों की आंखें तुरंत अजीब हो गईं, जो उपहास और उपहास से भरी थी। साथ ही गुप्त ईर्ष्या भी होती है। ईमानदारी से कहें तो उनके कृषि सुधार क्षेत्रों में मादा मच्छरों की तुलना में नर मच्छरों की संख्या अधिक है। पत्नी ढूंढना एक कठिन समस्या है और अधिकांश लोग अविवाहित ही रह जाते हैं। समलैंगिक महिलाएं यहां बिल्कुल नहीं आती। जो महिला साथी यहां आई या जो शिक्षित युवा महिलाएं निर्माण कार्य में सहयोग देने आई, उनमें मूलतः मांस से अधिक भेड़िए थे। वहां कम से कम दर्जनों लोग एक लड़की को घूर रहे थे। अगर तुम सावधान नहीं रहोगी तो किसी और की पत्नी बन जाओगी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो झेंगान इतना शक्तिशाली होगा कि उसने पहले ही अपने लिए पत्नी की तलाश शुरू कर दी थी। जो झेंगान चिंतित था और उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? लड़कियों पर लेबल लगाना बंद करो। अगर यह बात बाहर आ गई तो लड़की की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हम बकवास क्यों कर रहे हैं? रास्ते में तुम्हें अचानक एक दोस्त कैसे मिल गया? और तुम उसे रोज खाना पहुंचाते हो। मैं सोच रहा था कि तुम आजकल खाने में इतने व्यस्त क्यों हो गए हो। वह सचमुच मेरा दोस्त है। वह मेरे पिताजी के एक पुराने दोस्त की बेटी है। परसों मैं उससे अचानक मिला और बातचीत के बाद अचानक हमें पता चला कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अरे, हमारी टीम में इतनी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, तुम किसी के साथ अलग व्यवहार क्यों नहीं करते? तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे लिए खाना भी बनाया। तुम मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकती? मैं सोच ही रहा था कि अचानक उस निर्दयी बूढ़े जो को होश आ गया। पता चला कि उसे हमारी टीम के वो बदतमीज लोग पसंद नहीं हैं। जो झेंगान सिर्फ जिया जियान को ये पहचान दे सकता था। उसके लिए बिना किसी वजह के एक अनजान लड़की से मिलना अनुचित था, लेकिन वह बाहरी लोगों को यह नहीं बता सकता था कि वह जिया जियान की मदद कर रहा है। ये लड़की की इज्जत के लिए अच्छा नहीं है। एक अनजान लड़की दूसरे का खाना कैसे खा सकती है? हालांकि शुरू में उसके इरादे अच्छे थे, जिया जी ने यह भी कहा कि वह भविष्य में उसे चुका देगा, लेकिन अगर ये बात बाहर आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा मेरे इरादे नेक नहीं थे और मैं दूसरों को ये नहीं बता सकता था कि मैं जिया जैद के साथ इतना अच्छा क्यों था। तभी रेस्तरां के वेटर ने दरवाजा खोला। साथियों, कृपया अंदर आइए और कुछ खाना ले लीजिए। जो झेंगान जल्दी से भीड़ से अलग होकर अंदर चला गया। भोजन पाकर वह पीछे मुड़ा और भाग गया, इस डर से कि कोई उसे रोक लेगा, और इधर उधर पूछने लगा। बूढ़ा वो और अन्य लोग बहुत उत्सुक थे। क्या आप नहीं देखना चाहते कि जो झेंगान का दोस्त कैसा दिखता है? देखो बूढ़ा जो कितना भ्रमित है, जियांग यिफान ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। मैं देखना चाहता हूँ, लाओ जो और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। ये आदमी तो लोहे के पेड़ जैसा है। मुझे तो लगा था कि इसकी जिंदगी में कभी शादी ही नहीं होगी। अब ये खिल गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि यह किस तरह की लड़की है। जब ली गे और अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्होंने उत्सुकता से सिर हिलाया। चलो चलें और देखें। जिया जी और झू झेंगन छोटे स्टूल पर बैठे थे और आज का नाश्ता हॉटपॉट नूडल सूप था। बेशक नूडल सूप में एक उबला हुआ अंडा भी है। ये हॉटपॉट नूडल सूप वास्तव में मांस शोरबे से बनाया जाता है, जिसकी सतह पर तेल तैरता रहता है और कभी कभी वसायुक्त मांस का एक टुकड़ा भी दिखाई देता है। झू झेंगन आज थोड़ी दुविधा में था क्योंकि दो लंच बॉक्स में नूडल सूप था जो थोड़ा गर्म था। उसने दोनों लंच बॉक्स को जलने से बचाने के लिए उन पर तौलिया रख दिया। दोनों लंच बॉक्स लड़की को देना थोड़ा अनुचित होता, लेकिन अगर लंच बॉक्स जियाजी के हाथों में नहीं है तो चावल का स्वाद अच्छा नहीं होगा। जियाजी को थोड़ा अजीब लगा जब उसने देखा कि झू झेंगन दो लंच बॉक्स एक तौलिये पर रख रहा है और उसे नहीं दे रहा है। झू झेंगन को क्या हो गया है? वह मुझे खाना देने से कतरा रहा है। क्या उसे एहसास हुआ कि वह पिछले दो दिनों से मेरा खर्च नहीं उठा सकता? दरअसल यह महज एक मजाक था, लेकिन जब मैंने ये कहा तो मुझे अचानक लगा कि इसमें कुछ अस्पष्टता है। झू झेंगन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, तुम एक बिल्ली के बच्चे से भी कम खाते हो। आज मेरा नाश्ता बहुत गर्म है। वह इस वजह से जियाजी को लंच बॉक्स नहीं दे सकता था, इसलिए झू झेंगन ने आज सुबह उसे खाने का स्वाद ही नहीं लेने देने का फैसला किया। एक लंच बॉक्स को तौलिये पर रखकर जियाजी को दे दिया गया। जियाजी ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। झू झेंगन को अचानक एक विचार आया और उसने जल्दी से अपने हाथ में दूसरा लंच बॉक्स जियाजी को दे दिया। जिया जेड के हाथ से लंच बॉक्स ले लो। मैं भूल गया था कि लंच बॉक्स में से एक में दो तले हुए अंडे थे। मैं ये भी भूल गया कि वह कौन सा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह सबसे नीचे वाला था। बोलते बोलते उसने घबराहट में लंच बॉक्स खोला। परिणामस्वरूप उसके हाथ में लंच बॉक्स में दो तले हुए अंडे तैर रहे थे। झू झेंगन का चेहरा अचानक लाल हो गया, मानो वह किसी लड़की से तले हुए अंडे के लिए लड़ रहा हो।